आज का प्रातः क्लास है तीस तीन 1967। आत्मा ही भाग्यशाली बनती है और आत्मा ही दुर्भाग्यशाली बनती है। किसके द्वारा है? है? कर्म के आधार पर। कर्म कौन सिखाता है? कर्म अकर्म विकर्म की गति कौन बताता है? शिव बाप को तो मुख ही नहीं है, उसको तो शरीर ही नहीं है, बताएगा कैसे? शिव बाप। हाँ, शिव बाप निराकार आत्माओं का निराकार बाप है। निराकार बाप से तो निराकारी ज्ञान का वर्षा ही मिलता है। और भाग्य सिर्फ निराकारी ज्ञान से ही बनता है या कोई और भी है जिसके द्वारा आत्मा भाग्यशाली बनती है? मीडिया तो चाहिए ना? नहीं चाहिए? तो मीडिया कौन होना चाहिए? कौन होता है? यहां भाग्यशाली और दुर्भाग्यशाली की बात हो रही है। धनवान होगा तो धनवान बनेगा, ज्ञानवान होगा तो ज्ञानवान बनेगा। जमींदार होगा तो जमींदार बनाएगा। खुद ही नहीं होगा तो दूसरों को बनाएगा क्या? नहीं बनाएगा तो भाग्यशाली कौन बनाता है? और फिर दुर्भाग्यशाली कौन बनाता है? कहेंगे आत्मा के कर्म ही भाग्यशाली बनाता है और आत्मा का कर्म ही दुर्भाग्यशाली बनाता है। तो वो कर्म की गति प्रैक्टिकल में सिखाने वाला कौन? जो भाग्यशाली और दुर्भाग्यशाली बने। शिव बाप तो प्रैक्टिकल सिखा ही नहीं सकता क्योंकि वो तो निराकार आत्माओं का निराकार बाप है। तो वो साफ कहता है मैं त्रिकालदर्शी हूं, परंतु मैं मास्टर त्रिकालदर्शी नहीं हूं। तो फिर मास्टरी हासिल करने वाला कौन? अरे बताया तो है तुम बच्चे हो नंबर बार मास्टर त्रिकालदर्शी, तो भी कर्म अकर्म विकर्म की प्रैक्टिकल मास्टरी जिसे कहें थ्योरेटिकल मास्टर नहीं, सिर्फ किसके साथ साथ प्रैक्टिकल में करके दिखाने वाला भी, क्योंकि थ्योरी में कोई पास होता है और प्रैक्टिकल में फेल होता है तो क्या माना जाता है? फेल माना जाता है। तो वो प्रैक्टिकल में भाग्यशाली कौन? जो सबको भाग्यशाली बनाए, शिव बाप सच्चाई का रास्ता बताता है जिसको कहते हैं सत्य ज्ञान। उस सत्य ज्ञान से ही सतयुग स्थापन होता है, सत्व प्रधान दुनिया बनती है। परंतु वो आत्माओं का निराकार बाप तो अकर्ता है या करता है? तो जो स्वयं आकरता है वो तो प्रैक्टिकल में न कोई को भाग्यशाली बना सकता है न कोई को दुर्भाग्यशाली बना सकता है। तो क्या करता है वो? हाँ, जो गीता में बोला है अर्जुन से, अर्जुन की तरफ इशारा किया, इदम शरीरम कौन्तेय और क्षेत्रम इत्यभिधीयते। हे अर्जुन, तुम्हारा यह जो शरीर है वो कर्म अकर्म विकर्म सिखाने का, प्रैक्टिकल में करने का क्षेत्र है। क्षेत्र माना खेत, उस खेत में युद्ध भी लड़ा जाता है, युद्ध क्षेत्र है। मूल रूप में कर्म क्षेत्र भी है, जो गीता में पहले ही अध्याय में बोला क्या धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। इस धर्म क्षेत्र में और कुरुक्षेत्र में। कैसा धर्म क्षेत्र? जिसमें सब धर्म समाये हुए हैं, जो भी दुनिया में धर्म फैले हुए सब धर्म से लेकर असत धर्म तक भी, और उन धर्मों के आधार पर उन धर्म के जो प्रणेताएं गाए हुए हैं, धर्म पिताएं गाए हुए हैं, उनके द्वारा अथवा उनके फॉलोअर्स के द्वारा या गद्दीनशीन गुरुओं के द्वारा धर्म के आधार पर जो कर्म निर्धारित किए गए हैं हर धर्म में अलग अलग, उन कर्मों के आधार पर भाग्य बनता भी है और भाग्य बिगड़ता भी है। अब हिस्ट्री में देखा जाए तो धर्म जितने भी हैं दुनिया में वो सभी धर्म इस संसार में सदा काल रहते हैं या नंबरवार अल्पकाल रहते हैं? लेकिन गीता में कहा है ना सते विद्यते भावो ना भावो विद्यते सते। जो सत्य है मन सब धर्म है, उसका इस संसार में कभी अभाव नहीं हो सकता। कि आज है और कल न हो, उस धर्म के धर्मखंड का भी कभी विनाश नहीं हो सकता। कि आज वो धर्मखंड रहे सत धर्मखंड और कल न रहे। सत है तो सदा काल है या अल्पकाल है? जैसे कहते हैं गॉड इज ट्रुथ, ट्रुथ इज गॉड, तो ऑलमाइटी गॉड है तो उसकी सत्ता सदा काल होगी या अल्पकाल होगी? है सदा काल होगी। इसीलिए भारतीय परंपरा में उसे कहते हैं सदाशिव। क्या? सदाशिव। और फिर टाइटल भी देते हैं सत्यम शिवम सुंदरम। सदा शिव कहते हैं, लेकिन शिव के साथ जो नाम जोड़ा जाता है एकमात्र नाम, काम के आधार पर नाम बने हैं शास्त्रों में, तो जो एकमात्र नाम शंकर जोड़ा जाता है इसको कभी नहीं कहते हैं सदा शंकर, कहते हैं सदा शंकर नहीं कहेंगे। सदा शिव ही कहा जाता है। तो सवाल ये पैदा होता है कि जो सदा सत्य है, सब धर्म है, वो इस सृष्टि पर कोई धर्म पिता तो स्थापन करता होगा, कौन स्थापन करता है? जो धर्म पिता के नाम पर धर्म का नाम पड़ता है, है? सब धर्म का प्रणेता सदा सत्य होगा, सदा इन संसार में स्थिर होगा या लुप्त तो हो जाएगा? है सदा शिव, शिव है सदा शिव इस संसार में सदा स्थिर रहता है। सदा शिव कहा जाता है, लेकिन वास्तव में जिसका नाम शिव है और जो ब्रह्म वाक्य वेदवाणी में जिसे हम मुरली कहते हैं, वो स्वयं कहता है मेरी आत्मा का ही नाम शिव है, मेरे शरीर का नाम होता ही नहीं। तो वो आत्मा इस संसार में सदा शिव के रूप में विद्यमान रहती है, नहीं रहती? तो सद्धर्म का प्रणेता, सद्धर्म का धर्म पिता कौन हो सकता है? है हाँ, मनुष्य सृष्टि में सारी मनुष्य सृष्टि का बीज रूप बाप कोई तो होगा, और बीज का तो कभी नाश नहीं होता है। वृक्ष में जड़ें नाशवान है, मुख्य तना सहयोगी तने नाशवान है, ताल तालियां नाशवान है, पत्ते पत्ते नाशवान है, फल फूल नाशवान है, परंतु बीज का कभी नाश नहीं होता है। जो मनुष्य सृष्टि का बीज, उस बीज का इशारा गीता में भी दिया है वृक्ष के रूप में। क्या नाम दिया? कह देंगे हम तो पढ़ते ही नहीं, वो तो संस्कृत की गीता है, हम तो हिंदी भी नहीं जानते, हम क्या जाने। लेकिन ये कहने वाले ये नहीं कहेंगे कि हमने उस सत्य बाप को पहले पहचाना है, ये गलत बात है। इतने बड़े संसार में कौन सा देश है? कहेंगे भारत देश। और भारत देश में कौन सा शहर है जो सामूहिक रूप से, भले छोटे रूप में हो, सद्धर्म के प्रणेता सत्य धर्म पिता को पहचान लेता है, जान लेता है, मान लेता है कि वो कहाँ है और कौन है? बताओ कौन सा शहर है? है कलकत्ता पहले जानता है? है दिल्ली पहले जानती है? कर्नाटक कोई शहर नहीं है, वो तो स्टेट है। है कंपिल, कंपिल तो नॉर्थ इंडिया में ही है। नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया, इन दोनों में भारत का स्वदेश किसको कहा और विदेश किसको कहा? दक्षिण भारत को वेदवाणी में भारत का विदेश कहा, और विदेश में तो विदेशी ही रहते होंगे। है आत्मिक रूप से विदेशी रहते होंगे या देवान के रूप में विदेशी रहते होंगे? देवान के रूप में विदेशी, और स्वदेशी कहा जाता है, देह के आधार पर कहा जाता है स्वदेशी विदेशी। आत्मा के रूप में कोई स्वदेशी और विदेशी तो होता ही नहीं, पता नहीं आत्मा ने कहां कहां जन्म लिए होंगे, किसी को पक्का पता है कि हम आत्मा ने दक्षिण भारत में ही जन्म लिए? पक्का पता है किसी को? नहीं। हाँ देह के आधार पर कहा जाता है विदेशी। तो भारत को खासकर दक्षिण भारत को भारत का विदेश बोल दिया। किसने बोल दिया? है ब्रह्मा के मुख से जो वाणी निकलती है उस वेद वाणी ने बोल दिया। ब्रह्मा माने संसार की बड़े से बड़ी मां, जिसने सबसे जास्ती सहन करके दिखाया, दिखाया ना, तो उस मां के अंदर कौन सी शक्ति ने बोला? वेद वाक्य जो बोले वो माता बोलती है स्वयं, या माता के ऊपर कोई और होता है? है कोई और भी तो होता है या नहीं? कौन होता है? वो माता है। ब्रह्मा ने बड़ी मां माने मां संसार की बड़े से बड़ी मां सहनशील, जो आज भी देखा जाता है संसार की सभी माताएं जितना सहन करती हैं उतना तो कन्याएं कुमार अदर कुमार सहन करते हैं? करते हैं? करते ही नहीं। तो गुण के आधार पर मां नाम दिया गया और बड़ी से बड़ी मां। लेकिन वो मां बड़ी से बड़ी वो किसके आधार पर बोलती है? उसके बोलने का कोई आधार है या स्वच्छंद है? कौन है? अरे बड़े से बड़ी संसार की मां है तो बड़े से बड़ा बाप भी होगा कि नहीं होगा? मां के पीछे बाप नहीं होता है? तो क्योंकि कोई भी परिवार की माता जो कुछ भी बोलती है, खास भारतीय परंपरा में ऐसे माना जाता है कि माता जो परिवार का पिता है उसकी आन बान का ध्यान रख करके बोलती है, उसके मान मर्तव्य का ध्यान रख करके बोलती है। तो जिसे वेदवाणी कहा जाता है, जो वेदवाणी इस मनुष्य सृष्टि के बाप का मान मर्तव्य का ध्यान रखकर बोली गई है, जो बाप सारी वसुधा का बाप गाया हुआ है, ऐसे नहीं सिर्फ अमेरिका का, यूरोप का, या सिर्फ एशिया का, या सिर्फ भारत का। कहां का बाप है? विश्व पिता। तो जो विश्व पिता के रूप में गाया हुआ है, उसकी मान सम्मान की लाज जो विश्व की माता है वो तो जरूर रखेगी, क्योंकि माताओं के बीच में उस माता का ऊंच से ऊंच मर्तबा है या नहीं है? है, है? उस माता ने ऊंच से ऊंच सहनशीलता का काम करके दिखाया, जो सहनशीलता सर्वगुणों का राजा मानी जाती है। तो माता के मुख से जो वाणी बोली गई वो वेद वाणी कही गई, शास्त्रों में ब्रह्म वाक्य कहे गए। बोलते हैं ब्रह्मम वाक्यम धनार्दनम, ब्रह्मा के वाक्य पत्थर की लकीर हैं, उन्हें कोई काट नहीं सकता। अच्छा, ब्रह्मा के वाक्य पत्थर की लकीरें हैं, कोई काट नहीं सकता है, इतनी सच्चाई है 100%। तो आज की कलयुगी दुनिया में जब सभी धर्म लगभग मौजूद हैं, कहें विश्व धर्म है, तो वो माता की वाणी को कोई पढ़ते हुए सुनते हुए देखे जाते हैं है? वेदों का पठन पाठन होता है? होता है? नहीं होता है। क्यों? इतनी ऊंचे ते ऊंची चीज, ऊंचे ते ऊंची वाणी, उसका पठन पाठन क्यों नहीं होता? क्यों भूल गए? अरे कोई देश में तो पठन पाठन होना चाहिए। जिस देश में ब्रह्मा ने पार्ट बजाया हो प्रैक्टिकल में, वहां तो मान्यता होनी चाहिए या नहीं है? वहां भी नहीं? कोई वेदवाणी को पढ़ते हुए नहीं देखा जाता, कोई सुनते हुए नहीं देखा जाता, सुनने समझने में भी नहीं देखा जाता, तो प्रैक्टिकल व्यवहार में देखा जा सकता है? है? हाँ जी, देखा जा सकता है। तो सवाल ही नहीं। पहले सुनना सुनाना होता है, फिर समझना समझाना होता है, उसके बाद प्रैक्टिकल धारणा में देखा जा सकता है। तो कारण क्या है? कि संसार में, खासकर भारत में भी, ब्रह्मा की पूजा नहीं होती है, ब्रह्मा की मूर्तियां नहीं बनाई जाती है, ब्रह्मा के मंदिर नहीं बनाए जाते हैं, ब्रह्मा को कोई याद भी नहीं करता है। दुनिया की बड़े से बड़ी मां, पुराने से पुरानी मां, उस माता का ये हाल हो जाता है। हाल हो जाता है कैसा? अच्छा हाल हो जाता है या बेहाल हो जाता है? बेहाल हो जाता है। कोई याद भी नहीं करता, कोई यादगार नहीं बनाता। और कहा जाता है कि ओल्ड इज गोल्ड। क्या कहा जाता है? तो जब दुनिया की बड़े से बड़ी मूल रूप में जो माता हुई, महान से महान पार्ट बजाने वाली माता, सहन शक्ति का आधार, उसका ये हाल हो गया तो इस सृष्टि की जो चौथी अवस्था गिरती हुई है, तामसी स्टेज, उस स्टेज में जन्म लेने वाली माताओं का कार्य व्यवहार में आने वाली माताओं का क्या हाल होगा? है? अच्छे से अच्छा हाल होगा या बेहाल होगा? है? और प्रैक्टिकल में क्या देखा जाता है? बेहाल हैं संसार की माताएं या अच्छा हाल देखा जाता है? बेहाल है भी। तो इसको सत्य की विजय कहें या हार कहें? है? क्या कहें? विजय। माने माताओं की दुर्गति हो रही है संसार में, तामसी कलयुग में भी अंतिम समय में वो माताओं की विजय है। ये तो हार है, क्योंकि जो मूल माता हुई वो ही बेहाल हो गई इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर, तो उसके बेहाल होने का कारण कौन बना? अरे बिना कारण के कोई कार्य होता है क्या? जो आदि माता है वो ही बेहाल हो गई, तो अंत वाली कलयुग की माताओं की तो बात ही नहीं, उन्हें कौन पूछेगा? तो मूल कारण ढूंढना पड़े। माताओं के पतन का मूल कारण क्या हुआ, या मूल माता जो थी सारे षष्ठ वृक्ष की माता मुख मोह, माने माताओं को परिवार के प्रति मोह ममता नहीं होनी चाहिए, खराब बात है। अरे क्या अंतर है? हैं? हाँ, बच्चा कैसा भी नीच कर्म करने वाला हो परिवार में, नीचा हो, लफंगा हो, चोर हो, डकैत हो, लेकिन माँ उस बच्चे को अपनी गोद से अलग नहीं करना चाहती, तो ये न्याय है या अन्याय है? है? अरे और न्याय सिर्फ अपनी देह से ही कनेक्टेड है अपनी देह, अपनी देह का बच्चा, अपनी देह से संबद्ध या सभी माताओं की दृष्टि से देखना चाहिए? है अपनी देह की दृष्टि से ही देखना चाहिए, देखना चाहती है बात अलग, चाहिए क्या? देह से कनेक्टेड है, बच्चा है, इसलिए मोह ममता है, और वो मोह ममता न्याय है या अन्याय है? माता जी के लिए न्याय, एक माता जी के लिए न्याय है, सारी दुनिया की माताओं के लिए न्याय नहीं है, अन्याय है ना? न्याय सार्वभौम होना चाहिए या मात्र एक परिवार के लिए होना चाहिए न्याय, या परिवार की सिर्फ एक माता के लिए न्याय होना चाहिए? हैं? सारे विश्व के लिए होना चाहिए। तो माता में ये गलती कहां से आई? कैसे आई? है संगम युग में आई है, संगम युग में तो कहेंगे ब्रह्मा से आई। ब्रह्मा माता में वो जो देह बांध रहा उसका कारण क्या हुआ? कहां से आया वो देह बांध? क्या ब्रह्मा जानता नहीं था कि मैं देह नहीं हूं, आत्मा हूं, ज्योति बिंदु आत्मा? जानता था ना? है क्या?
जानता तो
था। और भारत की लगभग बहुत माताएं जानती है क्या कि मैं देह नहीं हूं? बिंदी लगाती तो जानती तो है कि बिंदी कभी नाक पे तो नहीं लगाती। कहां लगाती है? है? भारत की माताएं मस्तक के बीच में ब्रकुटी में, जिसका अर्थ है भरी पूरी कुटी, शरीर की वो भरी पूरी कुटी जहां ये देह रूपी राज्य का राजा रहता है, बैठता है। इतना जानते हुए भी वो माता इतना देवान में कैसे रहती है, आ जाती है? बाप की शक्ति की पहचान नहीं है कि बाप ज्यादा शक्तिशाली या बच्चे ज्यादा शक्तिशाली। बड़ा बच्चा ज्यादा शक्तिशाली या बाप ज्यादा शक्तिशाली? क्योंकि हर बाप हिस्ट्री में ऐसा देखा गया कि अपने बड़े बच्चे को सत्ता सौंप देता है। तो मां की दृष्टि में यही आता कि अब शक्तिशाली कौन है? बच्चा शक्तिशाली। अब बुड्ढा बाप क्या बिगाड़ेगा? या खुदा न खास्ता चला गया, मर गया, तो बिगाड़ने का कोई सवाल नहीं। तो क्या माता को बाप की नामौजूदगी में उसके मान मर्तबे का ध्यान नहीं रखना चाहिए? है? ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि माता को जो परिवार के बाकियों की पूंजी मिली है, शक्ति मिली है, बाल बच्चों की शक्ति, वो किससे मिली? बाप से मिली। तो किसी से कोई चीज मिलती है, कोई शक्ति मिलती है, लेने वाला लेता है, तो देने वाले के प्रति मान मर्तबा रहना चाहिए ना? नहीं कि अवसरवादी, जब मिलता है तो मान मर्तबा, और मिलने के चांसेस नहीं है तो भूल जाना। या अपमान भी बच्चे करते रहे तो करते रहे, इसको क्या कहेंगे? एहसानमंद कहेंगे या एहसान फरामोश कहेंगे? एहसान फरामोश ही कहेंगे। तो देखें ब्राह्मणों की हिस्ट्री में, आज के ब्राह्मण नहीं, आदिकाल के जो ब्राह्मण हुए, जो ब्रह्मा की औलाद, डायरेक्ट ब्रह्मा की औलाद ब्राह्मण कहे जाते हैं, वो ब्राह्मण देखें कि जिस ब्रह्मा की वाणी को वेद वाक्य माना जाता है, वो ब्रह्मा ने बाप को जाना, पहचाना या पहचानते हुए भी नहीं पहचाना, शक्ति को माना, जाना, ग्रहण भी किया, फिर बुला दिया। किस आधार पर बुला दिया? नौकर था तो नौकर तो था, लेकिन जो दुनिया के कोई भी गुरु गुसाइयों से दादा लेखराज ब्रह्मा को नहीं मिला और चारों ओर चक्कर काटते रहे और हताश होकर के जिसके पास आशा आई, निराश होते हुए भी, और उससे आशा की पूर्ति हो गई, तो एहसानमंद होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? है भले दुकान का नौकर था, नौकर माने दास, तो वो नहीं माना, वो नहीं समझा, और न समझने का कारण देवान या आत्माभिमान। देवान जो आत्माभिमानी होता है, वो दास हो, राजा हो, रंक हो, नीच हो, ऊंच हो, क्या देखेगा? आत्मा देखेगा या विनाशी देह देखेगा? आत्मा अविनाशी है, वो देखेगा। तो इतनी बड़ी प्राप्ति हो गई, और प्राप्ति का, प्राप्त कराने वाले का प्रैक्टिकल में मान नहीं आया, तो ये कारण हुआ मूल। क्या क्या मूल कारण हुआ है? अरे मान मर्तबा की बात जो देना चाहिए वो नहीं दिया, उसका कारण क्या थी? क्या हुआ? देवान माना, दुनिया की जो मूल माता है प्रैक्टिकल में, सहनशीलता का आगाज, जिससे ज्यादा सहनशीलता कोई दिखाई नहीं सका, वो माता देवान नहीं त्याग सकी है? त्याग सकी? देवान नहीं त्याग सकी। और न त्याग सकने के कारण, देह अहंकार के कारण वो पहचान भी नहीं सके। किसको? बाप को नहीं पहचान सकती। प्राप्ति होते हुए भी पहचान नहीं सके। तो इसका असर कहां तक जाता है? कलयुग के अंत तक माताओं की दुर्गति। उस देह से जब तक जीवित रही तब तक उस आत्मा की सदगति, क्योंकि उस देह में ऊंचते ऊंच आत्मा की प्रवेशता थी, तब तक सदगति। और जब वो आत्मा शरीर त्याग दिया तो आत्मा को सूक्ष्म शरीर मिल गया। पूर्व जन्म के कर्म के आधार पर और सूक्ष्म शरीर से ज्यादा शक्तिशाली होते हुए भी वो बाप के ऊपर बच्चों के मुकाबले ज्यादा निश्चयवान होकर रही या निश्चयवान होकर रही है? बाप के ऊपर अनिश्चयवान होकर रही। और बच्चों का पक्ष ही लेती रही, प्रैक्टिकल में ऐसा ही हुआ ना। तो आदि माता ने ये फाउंडेशन डाल दिया जिसने प्रैक्टिकल में माता का पार्ट बजाया। देह रहते क्या फाउंडेशन डाल दिया है कि आत्मिक स्थिति में स्थित रहने वाली आत्मा जब तक उसमें पार्ट बजाती रही तब तक उत्थान, और जब वो आत्मा चली गई तो परिवार का क्या हुआ? पतन शुरू। कोई उदाहरण है? नहीं। अरे दादा लेखराज ब्रह्मा के शरीर छोड़ने के बाद उसी वर्ष में ब्रह्मा वत्सों ने जॉन में बंटवारा कर दिया और जॉन के अलग अलग इंचार्ज बनकर बैठ गए या नहीं बैठ गए? और नियम क्या कहता है? एक के कंट्रोल में रहेंगे, डिवाइड नहीं होंगे, तो उत्थान होगा। और डिवाइड हो जाएंगे तो पतन होता है। अंग्रेजी में क्या कहावत है? यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। तो यही ब्राह्मण परिवार का होता है। ब्राह्मण परिवार में भी जो पिता बनने वाले हैं उनका उतना पतन नहीं होता, लेकिन जो माताएं कही जाती हैं उनका पतन होता है, भले वो कन्याएं हों। कन्याओं और माताओं में दोनों में देह भान ज्यादा होता है,
या कुमारों में और अधर कुमारों में देहबान ज्यादा होता है? माताओं कन्याओं में देहबान ज्यादा होता है। क्योंकि ज्यादा आकर्षण है स्त्री चोले में, तो सतयुग और त्रेता में जब तक ज्योतिबिंदु आत्मा स्थिर रहती है, चाहे पुरुषों में चाहे माताओं में, तब तक पतन नहीं होता। और फिर बाद में जैसे ही देवान की दुनिया बनती है द्वैतवादी द्वापर युग, दो दो धर्म, दो दो राज्य, दो दो मत हैं, दो दो कुल, दो दो भाषाएं, दो से चार, चार से आठ, वैसे दुनिया का पतन होता है। लेकिन सबसे जास्ती पतन किसका होता है? कुमारों का, कुमारियों का, अधर कुमारों का या माताओं का? माताओं का होता है। क्योंकि देवान जिसे हम पुरुष की प्रकृति कहते हैं, प्रकृति, प्र माने प्रकृष्ट, कृति माने रचना, हर पुरुष जो इस संसार में बाप बनता है, जब बाप बनने के लिए लालायित तो हो जाता है, वो जीवन में कहीं न कहीं किसी न किसी कन्या माता के ऊपर आशिक बनता है या नहीं बनता है? है? बनता है। तो आशिक मासूक के पीछे भागता है या मासूक आशिक के पीछे भागता है? आशिक मासूक के पीछे भागता है। तो क्या साबित हुआ? कुआ प्यासे के पीछे जाता है या प्यासा कुएं के पास जाता है? है? प्यासा कुएं के पास भागता है। तो कौन किसके पीछे आकर्षित हुआ? है? आशिक मासूक के पीछे आकर्षित हुआ। तो किसकी वैल्यू ज्यादा बढ़ गई? है? मासूक की वैल्यू बढ़ा दी। किसने बढ़ा दी? आशिक ने बढ़ा दी। तो मासूका को गर्व आएगा ना? नहीं आएगा? है? गर्व तो आएगा। तो ये गर्व किस आधार पर आता है? है? हाँ, जो स्पेशलिटी है माता कन्याओं के देह की, देह भान की, जो सुंदरता को प्रदर्शित करती है, काय को प्रदर्शित करती है? सुंदरता को। और कहा यह जाता है, क्रम यह है कि पहले सत्यम, फिर शिवम माने कल्याणकारी, बाद में सुंदर। ज्यादा महत्व किसको देना चाहिए है? सत्य को महत्व ज्यादा देना चाहिए। अगर सत्य पकड़ लिया तो कल्याणकारी तो होगा ही होगा। फिर जो कल्याणकारी को पकड़ लिया, सत्य को पकड़ लिया, तो सुंदर भी होगा। और सत्य को पकड़ने में कहीं भूल हो गई परसेंटेज में तो क्या होगा है? तो गड़बड़ हो जाएगा। और वो देवान के कारण गड़बड़ होती है। तो बात पहुंची थी ये मनुष्य से चिरूपी वृक्ष और वृक्ष का बीज बाप। क्या? मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष और वृक्ष का बीज बाप। और जो दुनियावी वृक्ष और बीज होते हैं वो तो जड़ होते हैं, उनका तो उदाहरण दिया जाता है। जैसे गीता में उदाहरण दिया है, ऊर्ध्वं मूलं मदस्याख अश्वत्थं माहु अव्ययम्। अव्यय माने अविनाशी। अश्वत्थ वृक्ष नाम दिया। क्या नाम दिया? अश्वत्थ माने मन रूपी जो घोड़ा है उस पर स्थिर रहने वाला, आरूढ़ होने वाला। तो मन रूपी घोड़ा चलायमान होता है या स्थिर होता है? है मन रूपी घोड़ा तो होगा तो जरूर चलायमान होगा। चलायमाने भी चले, चंचल। और मन के आधार पर ही मनुष्य कहा जाता है, मननात् मनुष्य। मनन चिंतन करने वाला है तो मनुष्य, और मनन चिंतन मंथन करने वाला नहीं है, मन का उपयोग करने वाला नहीं है तो मनुष्य नहीं, वो जानवर है, कीड़ा मकोड़ा है। तो अब बताओ इस मनुष्य सृष्टि का जो बीज है वो बीज सदा मन रूपी घोड़े के ऊपर आरूढ़ रहता है, कंट्रोल करके रहता है या आधीन हो जाता है? आधीन हो जाता है। आत्मा किसको कहा जाता है? आत्मा में मन बुद्धि, और मन बुद्धि में जो अनेक जन्मों के समय हुए अच्छे बुरे कर्मों के संस्कार हैं उसे आत्मा कहा जाता है। और उन संस्कारों के आधार पर हर मनुष्य मात्र को शरीर मिलता है, गर्भ में शरीर तैयार होता है ना, किस आधार पर तैयार होता है? है? पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पर जो पांच तत्वों से बना हुआ शरीर है वो मिलता है आत्मा को। तो आत्मा बीज है और मनुष्य आत्मा मनोबुद्धि और मनोबुद्धि में भरे हुए पूर्व जन्मों के संस्कार का सार है। जिसे बिंदु कहते हैं, बिंदु जितना चाहो उतना सूक्ष्म बना दो। जो कहते हैं अणुअणियांसम, अणु से भी अणु, वो स्थूल अणु तो जिसे एटम कहते हैं, एटम बम बनाया जाता है, वो तो यंत्रों से कैच किया जा सकता है, लेकिन ये जो आत्मा अणु है इसे तो यंत्र से भी कैच नहीं कर सकते। क्या फिर कैसे कैच कर सकते हैं? है? आत्मा को मन बुद्धि रूपी जो यंत्र है उसी से कैच किया जा सकता है। क्या मन से मनन चिंतन मंथन करे, क्या करे? पहले मनन चिंतन मंथन करे, फिर जो मनन चिंतन मंथन हुआ वो कितना राइट हुआ और कितना रंग हुआ ये कौन पहचानेगा? बुद्धि। तो कोई भी मनुष्य मात्र के अंदर सर्वोपरि शक्ति क्या हुई? बुद्धि। ये गीता में क्लियर किया है, इंद्रियाणि परान्याहु, इंद्रियां बड़ी प्रबल हैं। किस बात में? किस बात में प्रबलता है इंद्रियों की? कंट्रोल करने के लिए प्रबल है या नहीं है? बड़ी प्रबल है। और इंद्रियों से भी प्रबल मन है, ग्यारहवीं इंद्रिय। क्या कैसे प्रबल है? ये दस इंद्रियां नौ इंद्रियां तो दिखाई पड़ती हैं, देखने में आती ही नहीं आती है, लेकिन मन तो देखने में भी नहीं आता। लेकिन इंद्रियां जो रस अनुभव करती हैं, उस रस का अनुभव इंद्रियां तभी अनुभव कर सकती हैं जब मन इंद्रियों का साथ दे। जैसे महबूब का मिसाल दिया जाता है, कारखाने में जा रहा है, कारखाने पहुंचा, महबूबा को याद करते करते किसी ने पूछा रास्ते में किसको किसको देखा, तो कहता मुझे कुछ ध्यान नहीं है। अरे क्या रास्ते में अंधा हो गया था, आंखें बंद करके आ गया क्या? आंखें तो खुली थी, तो रास्ता क्रॉस करके आया, फिर क्या बात हो गई? है आंखें खुली थी, खुली ही आंखों ने, इंद्रिय है ना, इंद्रियों में सर्वोच्च इंद्रिय है ज्ञान इंद्रिय कही जाती है, ज्ञानी को तो ऊंचा माना जाता है। तो ज्ञान ग्रहण करने वाली इंद्रिय जो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ इंद्रिय कही जाती है वो खुली हुई थी, लेकिन किसी को नहीं देखा, क्योंकि मन जो रास्ते में आने जाने वाले थे उनको नहीं देख रहा था, मन आंख का साथ नहीं दे रहा था। किसका साथ दे रहा था? है महबूबा का साथ दे रहा था। तो ऐसे ही है ये ग्यारहवीं इंद्रिय बड़ी प्रबल है, इंद्रियों से भी जास्ती प्रबल है। वो ग्यारहवीं इंद्रिय कोई भी इंद्रिय का साथ देगी तो इंद्रिय अपना कार्य कर सकेगी, रस अनुभव कर सकेगी, नहीं तो नहीं कर सकेगी। तो मनुष्य सृष्टि में जितने भी मनुष्य मात्र हैं वो नंबरवार हैं कि एक जैसे हैं? और सबके अंदर जो मन काम कर रहा है वो एक जैसा प्रबल है, शक्तिशाली है या नंबरवार है? नंबरवार है। और बुद्धि भी नंबरवार है। मन और बुद्धि जिसे आत्मा कहा जाता है वो नंबरवार है, तो इंद्रियां भी नंबरवार होंगी। तो कोई अव्वल नंबर होगा मनुष्य सृष्टि का बीज रूप बाप, होगा या नहीं होगा? तो जो अव्वल नंबर है इस मनुष्य सृष्टि का बीज रूप बाप, बुद्धि में भी अव्वल नंबर और मन की मनन चिंतन मंथन की शक्ति में भी अव्वल नंबर और ज्ञानेंद्रियों में भी, ज्ञानेंद्रियों का जन्म जन्मांतर सुख लेने में अव्वल नंबर या नंबर वाला पहुंच जाएगा, अव्वल नंबर। और जो कर्मेंद्रियां हैं उन कर्मेंद्रियों में भी अव्वल नंबर होगा शक्तिशाली या नंबर वार होगा? है अव्वल नंबर। तो जो अव्वल नंबर है वो ही बाप है। कहा? वसुधा, वसुधा माने पृथ्वी, इसलिए कहा जाता है वसुधैव कुटुंबकम। क्या? सारी वसुधा ही हमारा कुटुंब है। हमारा माने किसका है? हम आत्माओं का। जो आत्म की स्थिति में स्थित होने वाले हैं वो कहेंगे कि सारी पृथ्वी और पृथ्वी के सारे ही बसने वाले वासी कोई भी हो सब हमारे कुटुंब के परिवार के भांति हैं। लेकिन कब? डिवाइडेड है तो या यूनाइटेड है तो? यूनाइटेड है तो भांति दिखाई देंगे, वो भाव भरा हुआ होगा ज्ञानेंद्रियों में, और कर्मेंद्रियों से ऐसे कर्म करेंगे। ये सब आत्माएं हमारे आत्मा आत्मा भाई भाई, लेकिन आत्मा के लिए तो कुछ करती नहीं है। आत्मा के जो संस्कार होते हैं इस जन्म के भी और पिछले जन्मों के भी, वो संस्कार भी तो काम करते हैं, नहीं करते? करते हैं। तो जो संस्कार का परिवर्तन हुआ वो ही सबसे बड़ा परिवर्तन हो गया। मन बुद्धि में संस्कार भरे हुए हैं और बुद्धि सबसे ज्यादा शक्तिशाली है। इस मनुष्य सृष्टि में मनुष्यों की जो बुद्धि है वो मनुष्यों में शक्तिशाली तत्व है, और मनुष्यों के बीच कोई एक है अव्वल नंबर मनुष्य, बीज रूप मनुष्य आत्मा, जो हीरो पार्टधारी मनुष्य सृष्टि रूपी रंगमंच पर हीरो का पार्ट बजाने वाला, एक जन्म में या सभी जन्मों में है? एक सीन में हीरो का पार्टधारी या जो भी ड्रामा के सीन होते हैं उन सभी में ऑलराउंड पार्टधारी हीरो, सभी में हीरो पार्टधारी। किस आधार पर हीरो पार्टधारी? क्यों बन जाता है हीरो पार्टधारी? इसमें भी कोई मूल कारण होगा या नहीं होगा? है क्या? वो मनन चिंतन मंथन कर लेता है, उसका भी मूल कारण क्या? मनन चिंतन मंथन करने का भी मूल कारण है जो मन बुद्धि रूपी आत्मा है, जो इस शरीर में राजा बनकर रहता है, वो राजा देखने में आता है, है? इंद्रियां देखने में आती है, और जो राजा है वो देखने में नहीं आता। और राजा जिसके ऊपर कंट्रोल करता है, कोई तो राज्याधिकारी होता है, नहीं होता है? तो वो होता है महामंत्री। क्या? महामंत्री होता है। महा माने बड़े ते बड़ी, मंत्रणा देने वाला मंत्री। तो महामंत्री के कंट्रोल में राजा रहना चाहिए या राजा के कंट्रोल में महामंत्री रहना चाहिए? है? राजा के कंट्रोल में महामंत्री होना चाहिए। तो अब बताओ, गीता के अनुसार ये बातें क्लियर हो जाती है। जो कहा 10 इंद्रियां बड़ी प्रबल हैं, जैसे इस मनुष्य सृष्टि के 10 धर्म पिता है, और मुख्य मुख्य वो 10 धर्म और उनके ऊपर ऊंचे ते ऊंचे कोई धर्म है या नहीं है, तो उस धर्म का जो प्रणेता है वो सबके ऊपर हुआ या नहीं हुआ, प्रणेता प्रणेता या पिता या बीज, जैसे परिवार होता है तो परिवार का बीज कौन, बाप जो बीज डालता है। तो इस मनुष्य सृष्टि रूपी परिवार का बीज है वो हीरो पाटधारी जो इस सृष्टि रूपी रंग मंच पर ऑलराउंड पार्ट बजाता है। और वो भारतीय परंपरा में शास्त्रों में प्रसिद्ध है, कौन जो सत्य है सदा सत्य है इस मनुष्य सृष्टि रूपी रंग मंच पर, उसका लोप कभी होता ही नहीं, सबका लोप हो जाए क्या, किसका लोप हो जाए, सबका लोप हो जाए, लेकिन वो धर्म पिता का लोप नहीं होता जो सब धर्म की स्थापना का निमित्त बनता है। इसलिए सत्य सनातन सब धर्म कहा जाता है। जो सृष्टि के आदि में भी था, मध्य में भी होता है और अंत तक भी रहता है, और अंत होने के बाद सारी मनुष्य सृष्टि का अंत होने के बाद भी रहता है या नहीं रहता है, रहता है। वो भारत में प्रसिद्ध है, भारतीय शास्त्रों में प्रसिद्ध है, कौन है, शिव शंकर, शिव शंकर, ये दो नाम जोड़ दिए, शिव माने कल्याणकारी, शिव माने बिंदु और शंकर माने मिक्स मिश्रण। तो सदाकाल है, दोनों सदाकाल हैं, क्या अंतर पड़ गया, शिव शंकर कहने में और शिव बाबा कहने में। अरे है एक आदमी और शिव शंकर में शिव शंकर में शिव नहीं है, माना शंकर किसी की याद में नहीं बैठा है, शंकर जो नामधारी है काम के आधार पर नाम पड़े हैं शास्त्रों में, वो शंकर उसमें स्मृति नहीं है शिव की, और ब्रह्म वाक्य भी तो है, वेदवाणी है क्या, तुम मुझे जितना याद करते हो उतना मैं तुम्हारे साथ हूं। तो शंकर याद में है, होता है या नहीं, होता है, तो कैसे कह दिया कि शंकर में शिव नहीं होता, याद कर रहा है तभी तो है
हाँ हाँ बिना पहचाने कैसे याद करेगा? पहचाना तो याद करता है, याद करता है माना मन बुद्धि में है ना कि जुदा है? हैं? जुदा है, हैं? तो शिव बाबा में और शिव शंकर में क्या अंतर हुआ? अरे बताओ, तो सारे जवाब भाई लोग ही दे रहे हैं, माताएं नहीं देंगी है? देखो बाबा ने कहा शिव शक्तियां स्वर्ग के गेट खोलेंगी, भाइयों को दुर्योधन दुशासन बता दिया है। वो तो अपनी करनी से बाज नहीं आने वाले, तो बाबा की आस किसके ऊपर लगी हुई है? शक्तियों के ऊपर, शक्तियां डम्ब होके बैठ जाए
है?
शिव बाबा और शिव शंकर में अंतर है या नहीं? क्या अंतर है? एक है, एक आदमी बोलो। शिव भी पुरुषार्थी है,
पुरुषार्थ करने वाला है।
शंकर पुरुषार्थ करने वाला है, शिव जो है पुरुषार्थ नहीं करने वाला है। शंकर पुरुषार्थी है, किस बात का? किस बात का पुरुषार्थी है? याद का पुरुषार्थी है। अधूरा पुरुषार्थी है या संपन्न पुरुषार्थी है? अधूरा पुरुषार्थी है। और शिव पुरुषार्थी नहीं है, याद का, क्योंकि उसे याद करने की दरकार है ही नहीं। लेकिन सदाकाल शिव है या नहीं है? सदाकाल बिंदु है या नहीं है? है, सदाकाल बिंदु है। और शंकर कभी ज्योति बिंदु रूप है, कभी नहीं है। तो ये अंतर हो गया। जब पुरुषार्थी है तो शंकर है, और शंकर है तो अधूरा पुरुषार्थी है।
बाबा शिव बाबा पुरुषार्थी भी है और पुरुषार्थ कराने वाला भी है।
माना जब हम कहते हैं शिव शंकर तो पुरुषार्थ कराने वाला शिव शंकर है या शंकर है? शंकर पुरुषार्थ करने वाला है ना? और फिर उसको पुरुषार्थ कराने वाला कौन है? कराता है। कराता है, शंकर सूक्ष्म शरीर का नाम है, स्थूल शरीर का नाम है या निराकारी स्टेज का नाम है? है? हाँ, तीन आत्माएं जिसमें कार्य करें तो शंकर है। शिव की आत्मा भी और कृष्ण की आत्मा भी और राम वाली आत्मा जिसका शरीर है वो भी कार्य करती है। तो तीनों का कार्य जिसके अंदर होता है उस शरीर का नाम पड़ता है।
शंकर, नहीं तो नाम आत्मा का नहीं पड़ता। जिस आत्मा का नाम पड़ता है वो शिव है और वो एक ही है, कोई दूसरी आत्मा नहीं है जिसके आत्मा का नाम हो शिव। तो शंकर किसका नाम है? शरीरधारी का नाम है, जिस शरीर में तीन आत्माएं कार्य करती हैं, शिव की आत्मा जो सदा ज्योति बिंदु है, शंकर की आत्मा जो सदा ज्योति बिंदु नहीं है, कभी है कभी स्मृति स्वरूप बनती है तो है कि हाँ स्मृति आ गई, मैं शरीर नहीं हूं, मैं ज्योति बिंदु आत्मा हूं। तो और तीसरी आत्मा भी क्या? सूक्ष्म शरीरधारी आत्मा जो उसमें प्रवेश करती है, पावरफुल में प्रवेश करती है या कमजोर में प्रवेश करती है? सूक्ष्म शरीरधारी आत्मा पावरफुल में प्रवेश करेगी या कमजोर में प्रवेश करेगी? कमजोर में ही पावरफुल आत्मा प्रवेश करती है। इसका मतलब ये हुआ कि जो प्रवेश करने वाली आत्मा वो पावरफुल हो गई और जिसमें प्रवेश हुआ, जिसके शरीर में प्रवेश हुआ वो कमजोर हो गई। ऐसे ही बीज का जब ये हाल है, मनुष्य सृष्टि के बीज का, तो जो भी मनुष्य सृष्टि के अंग हैं, जड़े हों, तने हों, टहनिया हों, फल हों, फूल हों, पत्ते हों, सबका क्या हाल होगा? है? बुरा हाल। वो शरीरधारी आत्मा है मनुष्य, 500-700 करोड़ मनुष्य कोई भी हो, देव आत्माएं बनने वाली हो, मनुष्य आत्माएं हो, राक्षसी आत्माएं कही जाएं कर्म के आधार पर, लेकिन वो सब की सब जब बीज का ये हाल है, क्या तो उस आत्मा का जो शरीर है उसको कोई कैप्चर कर लेता है। तो बीज का जब ये हाल है तो जो वृक्ष के और पत्ते हैं विनाशी, बीज तो अविनाशी है, इतना पावरफुल है, तो औरों का क्या हाल होगा? अच्छा हाल होगा या बुरा हाल होगा? बेहाल होगा। और जो भी हैं शरीरधारी उनकी जो बुद्धि रूपी आत्मा है वो पथराई जाती है। जैसे मनुष्य शक्ति का जो बीज है जो भारत में शिव के लिंग के रूप में आज भी बहुत मान्यता प्राप्त है, और भारत तो क्या सारे विश्व में जो खुदाइयां हुई हैं देश देशांतर में, उन सभी देशों की खुदाइयों में वो लिंग मूर्तियां सबसे जास्ती तादाद में मिली। तो सार्वभौम है या एक देशी हुआ? सार्वभौम है।
ऐसा जो मनुष्य सृष्टि का बीज है, भारत में भी उसको कोई नहीं जानता वो क्या है, ये क्या करता है। आंखों से देखते हैं तो समझते हैं कि जो ये करता है वो हम भी करते हैं, बाहरी आंखों से देखते हैं ना, तो जो वो करता है वो हम भी करते हैं। परंतु प्रश्न पैदा होता है, इस शिवलिंग की पूजा क्यों होती है, हमारी पूजा क्यों नहीं होती, हम भी तो वही कर्म करते हैं, उसी कर्मेंद्रिय से। हैं? ये कोई सोचता नहीं है, ये वो ही सोचता है जिसको वो बीज जनाए देता है, जानकारी देता है। इसलिए तुलसीदास ने लिखा है, जे ही जानौ ते ही देव जनाई, और जानत तुम ही हुई जाई। जिसको जानकर वो ही बन जाता है। मनमना भव, मेरे मन में समा जा। अरे तेरे मन में ज्योति बिंदु एक शिव, तो जो समा जाएगा वो भी क्या होगा, ज्योति बिंदु। तो जो समाने वाला है उसको ज्योति बिंदु की नाली किसने दी है? जिसने नॉलेज दी वो ही पहला जानकार हुआ ना प्रैक्टिकल में। इसलिए बोला, जे ही जानो ते ही देव जनाई, और जान तुम्हें हुई जाई। माना उस बाप का परिचय बाप के सिवाय कोई दे नहीं सकता। वो एवरलास्टिंग बाप है। जैसे आत्माओं का एवरलास्टिंग बाप, जिसकी आत्मा का ही नाम शिव है, और कोई बाप नहीं हो सकता। वो बापों का बाप, उसका कोई बाप, उस आत्मा का कोई बाप है ही नहीं। ऐसे ही मनुष्यों के बीच जो मनुष्यों की बीज रूप आत्मा है, उसका परिचय उस मनुष्य रूप बीज रूप बाप के सिवाय कोई दे ही नहीं सकता। क्यों? मनुष्य सृष्टि के बीज रूप बाप का कोई बाप नहीं है, है? वो उसका परिचय नहीं दे सकता। देह नहीं है,
शिव अपना परिचय देता है।
शिव अपना परिचय देता है, माने मैं आत्मा हूं और तुम आत्मा बिंदु बिंदु मेरे बच्चे हो। माने जो बुद्धिमानों की बुद्धि है, वो बुद्धि रूप जो ओरिजिनल हैं, भूले हुए होने के कारण नहीं जानते कि मूल रूप में हमारी विशेष शक्ति कौन सी है, बुद्धि है, मन है या संस्कार है। बुद्धि, तो जो बुद्धिमानों की बुद्धि है, वो बुद्धि 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 आत्माओं को परिचय देती है कि तुम बुद्धिमान बाप के बुद्धिमान बच्चे हो। बुद्धि के आधार पर फैसला करो कि मैं कौन हूँ, मेरा बाप कौन है, ये सृष्टि क्या है, कौन इसका निर्माता है और कैसे। किसी की सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करो। खास भारतवासियों के लिए बोल दिया। आम सारी दुनिया के लिए ये बात है। क्या कि भारतवासियों ने सुनी सुनाई बातों से दुर्गति पाई। तो शास्त्रों में जो बातें हैं और शास्त्रों से जो बातें मिलती हैं वो सुनी सुनाई बातें हैं या उनका कोई पक्का प्रूफ है? है? पक्का प्रूफ है? प्रूफ है? प्रूफ नहीं है, क्योंकि प्रूफ और प्रमाण निकालना ये सबके बस की बात नहीं है। जो बुद्धिमानों की बुद्धि बाप है वो तो जन्म मरण के चक्र से न्यारा होने के कारण त्रिकालदर्शी है। भूत भविष्य वर्तमान तीनों को जानकार है, तो उसकी नजर में तो सारा प्रूफ है, नहीं है? है। और वो प्रूफ प्रमाण सहित सारा ज्ञान देता है, लेकिन वो दुनिया का ऊंचे से ऊंचा कवि विद्वान, विद माने जानना, जानकार, विद्वान, उससे ज्यादा जानकार कोई है ही नहीं। तो जो कवि होते हैं कवि के अंदर से जो बात निकलती है वो अंदरूनी बात निकलती है या बाहर की बात है? अंदरूनी बात निकलती है। सच्चाई अंदर होती है या बाहर होती है? जैसे बोलते भी है सत्यस्य तत्त्वम् निहितम् गुहायाम्, सत्य का तत्व गुफा, जिसे बाहर से देखो तो अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देता है। कोई रोशनी लेकर अंदर घुसे, हिम्मत करे तो दिखाई देगा अंदर तक, नहीं तो नहीं दिखाई देगा। जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी पेट, जिन्होंने सागर के गहरे अंतराल में घुस करके अवगाहन किया वो रतन खोज करके लाते हैं। सागर के अंदर रतन भरे पड़े हैं, रत्नागर कहा जाता है। और जो ऊपर ही बैठे रहे, डरते रहे, अरे हम घुसेंगे तो डूब जाएंगे, कहते हैं ना, क्या कहते हैं, है? अंदर घुसेंगे तो डूब जाएं, डूब पड़ेंगे। उनके गुरु भी ऐसे ही सिखाते हैं, अरे ज्ञान की गहराई में नहीं जाना, ज्ञान की गहराई में जाएंगे तो क्या होगा रिजल्ट, डूब मरेंगे। तो ये हिम्मत की बात हुई या हिम्मत पस्त करने की बात हो गई? ये हिम्मत को पस्त करने वालों की बातें हैं। और हिम्मत देने वाला कौन है? है। भगवान जिसे कहा जाता है उसे कहते हैं हिम्मत भगवान देता है। और सब तो मनुष्य मात्र हिम्मत तोड़ने वाले हैं, हिम्मत देने वाले नहीं है। क्योंकि मनुष्य मात्र नरक कहा जाता है, नरक बनाने वाले हैं। हिम्मत वो ही दे सकता है जो नर नहीं है, मनुष्य नहीं है। क्या है? भगवान है। और मनुष्य को भगवान नहीं कहा जाता? मनुष्य को भगवान कहा जाता है क्या? और तो इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट आदि सभी धर्म पिताएं क्या हो जाएं? भगवान हो जाए। क्रिश्चियन लोगों में तो आज भी कहते हैं हेवनली गॉडफादर। वो क्राइस्ट को हेवनली गॉडफादर मानते हैं क्या? क्राइस्ट अपन को हेवनली गॉडफादर कहता था क्या? वो तो कहता था मैं भगवान का गॉडफादर का बच्चा हूं। मुसलमान लोग भी इस बात को मानते हैं क्या? है है? वो भी मानते हैं। क्या कहते हैं? आदम को खुदा मत कहो, आदम खुदा नहीं। क्या? आदम खुदा नहीं, आदम खुद नहीं आता है। लेकिन खुदा के नूर से आदम जुदा नहीं। जो खुदा का नूर है, जो खुदा की रोशनी है आत्मा रूपी, उस रोशनी से वो अलग नहीं है। जो खुदा की नूर है, खुदा की रोशनी है, वही रोशनी आदम की है, सृष्टि के आदि पुरुष की रोशनी है। इसीलिए शिव शंकर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शिव नाम क्यों जोड़ दिया? क्योंकि शिव को याद करते करते शंकर क्या बन गया? शिव बाप समान बन गया। याद करने का इतना महत्व है। जैसे पत्नी जीवन भर पति के अंग को याद करती है, सुख लेती है, स्मृति में आता है बार बार, और अंत समय में जीवन की सारी स्मृतियां इकट्ठी होकर के वही स्मृति फिर हावी हो जाती है। कौन सी? पत्नी की बुद्धि में मरते समय कौन सी स्मृति हावी हो जाती है? पति के उसी अंग की स्मृति हावी हो जाती है जिस अंग से जीवन में ज्यादा सुख लिया है। तो क्या होता है? अंत मते सोगते, मते माने बुद्धि। अंत में जैसी बुद्धि बन गई वो ही स्वरूप अगले जन्म में मिल जाता है। ये बात पति के लिए भी लागू होती है, ज्यों की त्यों लागू होती है। तो पति अंत समय में स्त्री तन को याद करता है तो क्या बन जाता? स्त्री बन जाता। तो इतनी सच्चाई जब है दुनिया के हर स्त्री पुरुष के लिए, तो शंकर के लिए सच्चाई नहीं हो सकती है? कि जीवन में, पुरुषार्थी जीवन में जिसको जास्ती से जास्ती याद करेगा
अंत समय में उसी की याद ठहरेगी या नहीं ठहरेगी? नहीं ठहरेगी, ठहरेगी। और फिर क्या है, क्या कहा जाएगा? वो ही बन जाएगा। तो जो बन जाता है शंकर, कौन सा स्वरूप बन जाता है? हैं? शिव स्वरूप बन जाता है। इसलिए शिव शंकर कहा जाता है। शिव नाम पहले क्यों रख दिया? याद करने वाला तो शंकर है, हाँ, जिसको याद किया जीवन भर वो बड़ा हुआ ना, ज्यादा प्राप्ति कराने वाला हुआ ना, नहीं? पति सारा जीवन पत्नी को याद करता है तो पत्नी बड़ी हो गई पति के लिए, अंत समय में या स्वयं बड़ा हुआ है, पत्नी बड़ी हो गई, स्वयं को भूल गए, तो संघ का रंग लगा या नहीं लगा? है, संघ का रंग लगा।
है जो मरते समय स्त्री पुरुष को याद करे, पुरुष स्त्री को याद करे,
क्यों ऐसा नहीं होता है कि अगले जन्म में भी पुरुष को पुरुष क्यों ना मिले? स्मृति अरे नहीं किया याद और अगले जन्म में पुरुष पुरुष ही बन गया तो स्मृति कारण नहीं है। कोई सन्यासी बन गया, सच्चे सन्यासी भी होते हैं, झूठे सन्यासी भी होते हैं। कोई पुरुष को वैराग आ गया, वी माने विपरीत, राग माने प्यार, प्यार के विपरीत चला गया, नहीं याद करता और जीवन भर उसने याद नहीं किया। तो कौन सा चोला धारण करेगा? स्वयं का ही चोला मिलेगा ना। तो ये स्मृति का सवाल है, स्मृति की प्रधानता है। स्मृति जैसी होगी अंत समय में वैसी ही गति होगी, ये पक्की बात है। तो शंकर ने क्या किया है? शिव को याद किया और शास्त्रों में नाम भी प्रसिद्ध है, नहीं? एक ही याद की प्रधानता रही या अनेकों की या दो चार की याद की प्रधानता रही? तो नाम क्या पड़ा? एकलव्य। काम के आधार पर नाम पड़ा ना, शास्त्रों में जो भी नाम है किस आधार पर है? हाँ? काम के आधार पर है। तो जो एकलव्य नाम पड़ा है वो एक को बुद्धि से लव करने के आधार पर नाम पड़ा। तो स्मृति की ही बड़ी बलिहारी है क्या? इसलिए ये पुरुषार्थ बताया, अंतिम परीक्षा बताई पुरुषार्थियों की।
क्या अंतिम पेपर क्या होगा? नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। किसका मोह? अपनी देह का मोह, अपनी इंद्रियों की देह का, देह की इंद्रियों का मोह। देह की इंद्रियों से जो सुख मिलता है उस सुख का मोह, देह के पदार्थों का मोह, देह के अपनी देह से जुड़े संबंधियों का मोह और संबंधी तो गहरे भाव को लिया जाता है। इंद्रियों से संबंध जुड़ता है तो संबंधी कहा जाता है। संबंध गहरा होता है और संपर्क हल्का होता है। तो जीवन में जितने जितनों से संपर्क हुआ, कोई कोई ऐसे भी होते हैं संपर्की, जीवन में एक ही बार मिले हैं लेकिन उनकी स्मृति नहीं भूलती, ऐसे होता है कि नहीं? कभी कभी तो संपर्की जितने भी हुए उनका भी मोह खलास हो जाए, नष्ट हो जाए। इसका तरीका स्मृति में बताया। क्या तरीका बताया? एक को स्मरण करना है, कोई दो को, चार को या अनेकों को स्मरण नहीं करना है। और एक कौन? हाँ, शिव बाबा तो है, वो तो मंदिरों में हम हाथ जोड़ के माथा टिकाते ही चले आए है, लेकिन वो बुद्धि में आया कि कैसे है ऊंचे ते ऊंचे, कि बुद्धि में बैठ जाए कि यही ऊंचे ते ऊंचे है जो हमारा कल्याण कर सकता है, ऊंचे ते ऊंचे कल्याणकारी। वो भक्ति मार्ग में मंदिरों में तो माथा टिकाते रहे, लेकिन ये बात की जानकारी बुद्धि में बैठी कि यही इसी का सच्चा स्वरूप, वो हमारे जन्म जन्मांतर का कल्याण कर सकता है अगर उसे पहचान करके याद करें तो। तो कौन हुआ है? है? कौन है जिसे याद करें और वो ऊंचे ते ऊंचे है? क्यों? साकार से ऊंचे निराकार नहीं है? है? साकार से ऊंचे निराकार है आत्मिक भाव से। आत्मा अपन को समझे तो वो ऊंचे थे ऊंचे, परंतु क्या वास्तव में हम आत्मा ही हैं? हुए, बन गए आत्मा? हम देह के साथ आत्मा हैं, माने जीवन के साथ जीव आत्मा है। झूठी बात या सच्ची बात? हम जीव आत्मा हैं अभी, यह सिर्फ आत्मा है। अगर कोई कहे हम आत्मा हैं, हम देह नहीं है, तो सच्चा बोलता है या झूठा बोलता है? क्यों है? क्योंकि जीवन है जब तक शरीर है जब तक, तब तक जीवात्मा कही जाएगी, सिर्फ आत्मा नहीं है। या तो ऐसी स्टेज बना ले कि जब चाहे शरीर को छोड़ दे और जब चाहे शरीर को धारण करे, जब चाहे अपना शरीर छोड़ दे और किसी दूसरे के शरीर में प्रवेश करे, और जब चाहे दूसरे के शरीर से वापस आ जाए। इतनी शक्तिशाली आत्मा बने तब कहेंगे आत्मा। सूक्ष्म ते सूक्ष्म, शरीर तो स्थूल है, स्थूल तत्व का बना हुआ है। स्थूल में ज्यादा ताकत या सूक्ष्म में ज्यादा ताकत? सूक्ष्म में ज्यादा ताकत। तो सूक्ष्म आत्मा हम तब कहें अपने को जब देह में बंधे हुए न हो। अभी क्या स्थिति है? है अभी देह में बंधे हुए हैं, इसलिए वास्तव में हम प्योर आत्मा अभी नहीं कह सकते। देह में बद्धायमान है माने देहबान है, देह के बंधन से परे हो जाए तब हम आत्मा हैं। तो नंबर वार हैं ऐसी स्टेज प्राप्त करने में, यह सब एक जैसे हैं, एक ही टाइम पर आत्मा बनेंगे प्रैक्टिकल में, या टाइम आगे पीछे हो जाएगा? है कोई पहले आत्मा बनेगा देह से डिटैच, कोई बाद में बनेगा। जैसे वृक्ष होता है, उसमें पहली बार पहला फल आता है, और फल जब पक जाता है तो उसके अंदर का बीज फल से अपने को डिटैच कर लेता है, न फल से अटैचमेंट, न टहनी से अटैचमेंट, न तने से अटैचमेंट, पूरे वृक्ष से डिटैच, क्योंकि वृक्ष पुराना हो गया। ऐसे ही ये मनुष्य सृष्टि है, इस मनुष्य सृष्टि में जो मनुष्य सृष्टि का बीज है, पहला पहला वृक्ष का, चैतन्य वृक्ष का पहला बीज, वो इस मनुष्य सृष्टि से अपन को पहले पहले डिटैच कर लेता है।
तो अंत में ही आत्मा बनता है,
अंत में ही आत्मा बनता है। तब तक 84 जन्म से पहले देह रहता है, अंत तक सिर्फ देह रहता है। वो तो सभी रहते हैं देह और आत्मा। जो बीज है मनुष्य सृष्टि का, उसमें क्या अंतर है? उसमें यही अंतर है कि पूर्व जन्मों में चाहे द्वैतवादी जन्म हुए हों, द्वापर युग से दूसरे दूसरे धर्म पिताओं के साथ रहना पड़े, तो भी आसक्त होकर पार्ट बजाता है या डिटैच रहता है। डिटैच होने की शक्ति और बीजों के मुकाबले उसमें जन्म जन्मांतर जास्ती रही या कम रही? क्यों जास्ती रहती है उसमें?
क्योंकि इस सृष्टि में जो बीज रूप आत्माओं का बाप है, जब इस सृष्टि पर आता है, सत्य का ज्ञान देता है, तो उस सत्य को वो सबसे पहले ग्रहण करता है और सबसे जास्ती ग्रहण करता है। क्या? जास्ती ग्रहण करता है और सूटिंग हो जाती है, क्या रिहर्सल हो जाती है उसकी। बुद्धरूपी आत्मा में सत्य को पकड़ने की रिहर्सल सबसे जास्ती होती है या कम होती है? नंबर बार होती है, सबसे जास्ती होती है। तो वो सत्व 84 जन्म औरों के मुकाबले जास्ती काबिज रहेगा या नहीं रहेगा? यही कारण है कि द्वैतवादी द्वापर युग जब शुरू होता है, दूसरे दूसरे धर्म पिताएं जब इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर आते हैं और बड़ी पावरफुल आत्माएं आती हैं, पावरफुल धाम से, परम धाम, अंग्रेज लोग सुप्रीम एबोर्ड कहते हैं, मुसलमान लोग अर्श कहते थे, आज तो सर्वव्यापी कहने लगे, वो भी कि खुदा जर्रे जर्रे में रहता है। लेकिन पहले क्या कहते थे, खुदा कहां रहता है? अर्श में रहता है, फर्श में नहीं रहता। तो वो भी जानते हैं कि खुदा का ऊंचे से ऊंचा घर है और वो खुदा जिन फरिश्तों को भेजता है वो पहले जन्म में उन फरिश्तों का फर्श की दुनिया वालों से कोई रिश्ता देह का पक्का नहीं होता है। उनके चेहरे को देखने से ही लगता है, आंख को ध्यान से देखो, बुद्ध को देखो, क्राइस्ट को देखो, गुरु नानक को देखो, शंकराचार्य को देखो, देखने वालों को, जिन चित्रकारों ने आज तक उनके चित्रों को बरकरार रखा, चेहरे को, वो चेहरे क्या बताते हैं, क्या देखने में आता है? कि वो जैसे इस दुनिया में नहीं है, ऊंचे ते ऊंचे धाम से आए हैं तो उस धाम को प्रत्यक्ष कर रहे हैं। वो है ही सात्विक आत्मा है। तो वो सात्विक आत्माएं जब आती हैं, तो गर्भ से जन्म लेती है क्या? सत्व प्रधान आत्मा गर्भ से कैसे जन्म लेगी? गर्भ में तो दुख मिलता है, बंधन होता है, गर्भ में दुख होता है या कोई को सुख होता है? है? दुख होता है। क्यों? क्यों दुख होता है? है? क्यों बंधन महसूस होता है? कारण क्या? कि द्वैतवादी धर्म पिताएं जब इस सृष्टि पर आते हैं तो उनको गर्भ से जन्म नहीं मिल सकता, तो इस मनुष्य सृष्टि की कमजोर से कमजोर आत्मा को पकड़ लेते हैं। क्या? किसको पकड़ते? कमजोर से कमजोर आत्मा को पकड़ लेते। जैसे इब्राहिम आया, इस मनुष्य सृष्टि रूपी रंगमंच पर भारत में उसने किसको सबसे कमजोर आत्मा जान करके आधार बना लिया है? विदेशी धर्म पिताओं में, विधर्मी धर्म पिताओं में सबसे पावरफुल धर्म पिता है। तो उसकी कुर्सी, उसका जो फर्नीचर है, ऊंचाई होगा या नीचे होगा है? उसका फर्नीचर कैसा होगा है? विदेशियों के बीच, विधर्मी धर्म पिताओं के बीच ऊंचे ही होगा ना। तो जो आधार आत्मा बनती है वो मनुष्य आत्मा सतयुग त्रेता से जन्म लेती हुई आती है या अंतिम जन्म में ही होती है? हाँ, सतयुग में जो आठ नारायण गाए हुए हैं, शास्त्रकार ये नहीं जानते कि वो आठ नारायण ऋषियों के रूप में द्वापर युग में प्रख्यात होते हैं। और उन ऋषियों में एक गौतम ऋषि गाया हुआ है। क्या ऋषि माने? पवित्र। जो आत्मा है पवित्र जीवन बिताया पुरुषार्थी जीवन में, जैसे ब्रह्मा ने कैसा जीवन बिताया? पवित्र जीवन बिताया। तो शरीर के आधार पर पवित्र जो जीवन बिताया है वो पवित्रता की पावर सतयुग के जन्मों में उनको नारायण के रूप में स्थिर कर देती है। नारायण, उनका नंबर वार घर कहाँ है? ज्ञान जल में रहता है। वो ही नंबर वार ज्ञान जल का जो सार है, जो बीज रूप स्टेज बिंदु रूप बनकर के रहते हैं सतयुग में, वो ही आत्माएं जन्म लेते लेते द्वापर के आदि में, त्रेता के अंत में ऋषियों के रूप में विख्यात हुए। लेकिन वो जो भी ऋषि हुए थे वो प्रवृत्ति मार्ग के हुए या निवृत्ति मार्ग के हुए है? है? निवृत्ति मार्ग थे, प्रवृत्ति मार्ग के थे, प्रवृत्ति में थे। इसे गौतम ऋषि की पत्नी थी या नहीं थी? विख्यात है शास्त्र में, नाम है गौतम ऋषि, लेकिन वो नाम जो शास्त्र में पड़ा है वो नाम किस समय की यादगार है? संगमयुग की यादगार है। वो संगम का ऋषियों को बुद्धि में याद नहीं रहता, उन्हें तो चार युग ही याद रहते हैं, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग। तो वो पवित्र होने के कारण भले प्रवृत्ति मार्ग में होते हैं लेकिन दूसरे मनुष्यों के मुकाबले ज्यादा पवित्र होते हैं, नंबर वार, या कम पवित्र होते हैं? ज्यादा पवित्र होते हैं, इसलिए समाज में उनकी मान्यता ज्यादा होती है। तो उनमें जो पहला गौतम ऋषि गाया हुआ है, कैसा ऋषि? गौ मन इंद्रियां और तम मानस श्रेष्ठ, इंद्रियों में श्रेष्ठतम सुख जिसने भोगा। द्वापर युग से कौन सी इंद्रियां होती हैं जो प्रबल होती हैं? ज्ञान इंद्रियां या कर्म इंद्रियां? तो कर्म इंद्रियों में प्रबल कर्मेंद्रिय का जिसने सबसे जास्ती सुख भोगा वो नाम पड़ा शास्त्रों में, क्या नाम पड़ा? गौतम ऋषि। है संगम युग की बात, शूटिंग पीरियड की बात, वो निराकार पर्दे के पीछे रहने वाला परमेश्वर रंगमंच पर प्रत्यक्ष नहीं होता, पर्दे के पीछे रहकर डायरेक्टर का पार्ट बजाता है और बाकी सब रंगमंच पर पार्टधारी हैं, 500-700 करोड़। उनमें जो ब्रह्मा की रहवरी में रहने वाली आत्माएं विशेष हैं, जो सतयुग में उन ऋषियों में सर्वोपरि कौन माना जाता है? वशिष्ठ। कौन? वशिष्ठ। वो पार्ट किसका है? ब्रह्मा का। उसके बाद नंबर वार है वो। वशिष्ठ ने उन्हें प्रियोरिटी दी। तो जिसको प्रियोरिटी दी ब्रह्मा वाली आत्मा ने शूटिंग पीरियड संगम में, वो कौन सी आत्मा है जिसको विशेष मान मर्तबा दिया ब्राह्मणों के बीच? मम्मा को नहीं दिया है? मम्मा को नहीं दिया? ओम राजे मम्मा को। हाँ हाँ, तो पहले पहले ओम राजे मम्मा को ही विशेष मान्यता दी ना, तो वो तो हो गई ब्राह्मण परिवार की चिर संगनी माता के रूप में, दादा लिखराज ब्रह्मा की सहयोगी। सबसे जास्ती सहयोगी कौन हुई? मातेश्वरी ओम राधे। यहां हो गई तो ब्रॉड ड्रामा में पहले जन्म में वहां भी रहती है, पहला नारायण और उसके साथ पहली नारायणी। कौन सी आत्मा? वही ओम राधे मम्मा जाके पहली नारायणी बनती है। अब संगम युग में देखें कि मम्मा के शरीर छोड़ने के बाद ब्रह्मा बाबा ने पुरुषों में किसको ज्यादा महत्व दिया? पहले भी महत्व दिया था और मम्मा के शरीर छोड़ने के बाद पुरुषों में किस मनुष्य को ज्यादा महत्व दिया? है विश्व किशोर भाऊ, सारे ब्राह्मण परिवार का पूरा भार उनके ऊपर सौंपा हुआ था कराची से ही। बल हिंदुस्तान पाकिस्तान का युद्ध हुआ, खून खराबा हुआ, कोई भी पाकिस्तान में जाकर रसद लाने के लिए तैयार नहीं था, उस व्यक्ति ने हिम्मत की और मुसलमानों के बीच में जाकर के वो रसद लाता रहा। कहां? कराची में। और यहां भी जब तक जीवित रहा तब तक पुरुषों के बीच बाबा ने किसके हाथ में चाबियां सौंपी? पुरुषों के बीच, विश्व स्वरूप में। अब मम्मा ने जब शरीर छोड़ दिया तो मम्मा के बाद कौन सी कन्या माता निमित्त बनी जिसको ज्यादा मान मर्तबा मिला है, जो मुरली में ही बोल दिया, ब्रह्म वाक्य में बोल दिया, इन सभी सितारों में सबसे जास्ती खातरी होती है कुमारका की। तो कन्याओं माताओं के बीच कौन मुखिया बन गई है? कुमारका मुखिया बन गई। और कुमारका दादी में ये बड़ी सिख थी कि जो भी मुरली सुनती थी पहले वाक्य से लेकर के अंतिक वाक्य तक, वो सारी मुरली हिफ्ज करके ज्यों की त्यों सुना देती थी। उन महावाक्यों का, शब्दों का अर्थ समझे या न समझे, तो जब अर्थ ही नहीं समझा, गुह्यता में गई नहीं, तो अर्थ न समझने से अनर्थ होता है या सार्थक होता है? अनर्थ होता है। उन्होंने ये समझ लिया कि जैसे ब्रह्मा बाबा दृष्टि देते थे, वैसे जैसे मम्मा दृष्टि देती थी तो हम भी दृष्टि दे सकते हैं। और महावाक्यों की गुह्यता में नहीं गई कि मुरली में ये भी बोला है कि तुम बच्चे तो ऐसे नहीं करेंगे, बाप बैठ बच्चों को दृष्टि देते हैं, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ इंद्रिय का संग का रंग देते हैं, तुम बच्चे तो ऐसे नहीं करेंगे। अब दो तरह के ब्राह्मण थे ब्रह्मा के पास, एक वो ब्राह्मण जिन्होंने ब्रह्मा के मुख से निकली हुई वाणी पर ज्यादा ध्यान दिया, हाँ, और दूसरे वो ब्राह्मण मुख से निकली हुई वाणी पर विशेष ध्यान नहीं रहा, परमेश्वर की जो महावाक्य हैं, ज्ञान के उन ज्ञान की गहराइयों पर जाने की स्थिति नहीं रही, कहां आकर्षण हो गया? गोद में आकर्षण, कोख, कोख माने गोद, ब्रह्मा की गोद का मजा लेने में बड़ा आनंद आया, मम्मा की गोद लेने में बड़ा आनंद आया। और वो कुखवंशावली ब्राह्मण कहे गए, तो देह का संग लिया या दादा लेखराज ब्रह्मा में कार्य करने वाली सर्वश्रेष्ठ आत्मा जिसे परम पुरुष कहा जाता है, पुरुष माने आत्मा, उससे परम कोई होता ही नहीं, उस परम पुरुष का संग लिया या देहधारी अम्मा का संग लिया? है, अम्मा का संग लिया। इसलिए यही दोनों आत्माएं जो अपने पुरुषार्थी जीवन काल में समझती भी रहे कि यहां हम मम्मा बाबा के गद्दी नशीन हैं, मम्मा बाबा ने हमको सबसे जास्ती मान मर्तबा दिया, तो आने वाली नई दुनिया में भी इनके गद्दी नशीन हम ही बनेंगे, ये पक्का भाव था। तो सेकंड नारायण नारायणी बन जाते हैं, लेकिन जो सेकंड नारायण नारायणी बनते हैं, जो ब्राह्मण संगम युग में जो बनते हैं, वो देह का फकुर उन्हें ज्यादा रहता है या शिव की वाणी और शिव का फकुर ज्यादा रहता है? देह का फकुर ज्यादा रहता है। देह का जो क्या कहते हैं उमंग उत्साह बहुत रहता है, और देह विनाशी है या अविनाशी है? है देह विनाशी है। मम्मा और बाबा दोनों की देह आखिरी अंजाम विनाशी या अविनाशी? विनाशी। क्यों? क्यों नहीं पहचाना उन विनाशी के अंदर कौन अविनाशी था? है शिव। और जो शिव अविनाशी कार्य कर रहा था, उसने अपने को किसके सामने झुका दिया? आशिक बनकर, जो ब्रह्म वाक्य में बोल दिया भारत पर आशिक हुआ हूं। जो ऊंचते ऊंच आत्मा है वो किस पर आशिक हुई? है भारत के ऊपर आशिक हुई। भारत माने जड़ जमीन के ऊपर आशिक होती है या कोई चैतन्य आत्मा है? मनुष्य आत्मा उस पर आशिक होती है। चैतन्य तो चैतन्य के ऊपर ही आशिक होगा, उसी पर क्यों आशिक होती है? औरों पर क्यों नहीं है? क्योंकि त्रिकालदर्शी है, वो जानता है कि इस मनुष्य सृष्टि में कौन सी ऐसी आत्मा है जिसने सच्चाई के लिए, धर्म की सुरक्षा के लिए सबसे जास्ती जान मारी की है, इस मनुष्य सच्ची रूपी रंगमंच पर जन्म जन्मांतर जानता है कि नहीं जानता है? तो उसी को निमित्त बनाता है। कौन? परम पुरुष। पुरुष माने पुरु माने शरीर रूपी घर, अश माने शयन करने वाला। जो शरीर रूपी घर में बढ़िया तरीके से शयन करता है, भले पतितमो प्रधान शरीर है, पतितमो प्रधान दुनिया में आता है, तो भी आराम से रहता है या बेआरामी महसूस करके रहता है? अमन चैन से रहता है, क्योंकि उसको मन है ही नहीं। जो संकल्प विकल्प करे, इसलिए वो परम पुरुष है। पुरुषों के बीच, आत्माओं के बीच। जब इस मनुष्य सृष्टि पर आता है तो किसका आधार लेता है? है? किसका आधार लेता है? है? आधार पुरुष का लेता है या स्त्री चोले का लेता है? स्त्री चोले का आधार क्यों नहीं लेता? है? ये पार्श्व जी क्यों करता है? 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 अच्छा, इस मनुष्य सृष्टि में आकर जिस पुरुष तन का आधार लेता है उसमें प्योरिटी ज्यादा होती है, तमो प्रधान तन नहीं होता है, पत्थर बुद्धि नहीं होता है, है? कन्याओं माताओं में प्योरिटी ज्यादा रहती है। हाँ, पुरुष दुर्योधन दुशासन सब, इसलिए दुर्योधन दुशासन में प्रवेश कर दिया है। नहीं, वो आत्मा है, पुरुष है, पुरुष है, पुरुष माने आत्मा है, परम पुरुष है, तो परम पुरुष है, पुरुष है, तो पुरुष को अपने जीवन में आखिरीन क्या चाहिए? अरे, प्रत्येक पुरुष को अपने जीवन में क्या चाहिए? अनिवार्य रूप से चाहिए पुरुष को, तब चाहिए जब पक जाता है पुरुष। बच्चा है तो नहीं चाहिए, शिशु है तो नहीं चाहिए, किशोर है तो नहीं चाहिए। जब पक जाता है तो चाहिए। क्या? अरे, दुनिया में जो पुरुष होते हैं वो कब कहा जाता है कि पक गया और उसे चाहिए? और चाहिए ही चाहिए। है? हाँ, नौजवान हो जाता है तो उसमें क्या पक जाता है? इस शरीर के अंदर जो भी मांस मज्जा खून आदि हैं तत्व, उन तत्वों में से कौन सा तत्व है जो परिपक्व हो जाता है? वीर्य परिपक्व हो जाता है, उसी वीर्य को सत्व कहा जाता है। क्या कहते हैं? सत्व कहते हैं ना। तो वो सत्व को कोई भी पुरुष मात्र अपने अंदर सदा काल के लिए धारण करके नहीं रह सकता। आधीन हो जाता है, बरबस आधीन होना पड़ता है। क्या चाहिए? किसके अधीन होना पड़ता है? कोई नहीं कहिए, कोई ना कोई स्त्री चाहिए। वो पुरुष है तो स्त्री चाहिए। और नहीं मिलती तो क्या करता है? और चोरी चकारी करेगा या नहीं करेगा? या दुर्योधन दुशासन बनेगा या नहीं बनेगा? मजबूर है। ऐसे ही वो है स्थूल सत्व, जिस सत्व को धारण करने वाली स्त्री या माता अगर सच्चाई से जीवन में धारण करती है तो सती कही जाती है। क्या कही जाती है? सती। कैसे? ये भारत में ही गायन है सती का, विदेशों में गायन नहीं है। क्यों? विदेशों में ये मान्यता ही नहीं है, मेरा तो एक दूसरा न कोई, सारा जीवन में एक दूसरा न कोई, उसको कहते हैं भारत में सती। और सती की शक्ति को सभी को मान्यता पर मानना पड़ता है। जालंधर राक्षस की कहानी बहुत प्रसिद्ध है। वृंदा सती जब तक जालंधर के पक्ष में रही, भगवान और भगवान का पूरा परिवार जो कहा जाता है वो कुछ नहीं बिगाड़ सका। किसका? जालंधर राक्षस का। और जब वो वृंदा विष्णु के प्रभाव में आ गई तो जालंधर मारा गया। क्या खासियत थी? है किस बात की दृढ़ता थी? मेरा तो एक दूसरा न कोई। इतनी दृढ़ता अगर है धारण करने वाली कन्याओं माताओं में, सत्य को धारण करने वाली कन्याओं माताओं में, तो उनके सामने भगवान को भी झुकना पड़े, जो दुनिया की ऊंचे से ऊंची शक्ति मानी जाती है। इसलिए माता गुरु प्रसिद्ध है। वो परम पुरुष इस सृष्टि पर आता है तो पुरुष तन लेता है या स्त्री चोला लेता है? है पुरुष तन लेता है। क्यों? अरे उसे तो पता है कि भारत की कन्याएं माताएं जितना पवित्रता का पालन करती हैं, मेरा तो एक दूसरा ना कोई। चलो कलयुग के अंत में भी दूसरे देशों के मुकाबले अभी भी भारत की कन्याओं माताओं की सुरक्षा पवित्रता के लिए माता पिता ज्यादा करते हैं या नहीं करते हैं? दूसरे देशों के मुकाबले ज्यादा करते हैं। तो ये जानते हुए भी, वो तो त्रिकालदर्शी है, फिर भी जिनको दुर्योधन दुशासन कहता है कौन? वो। और है भी या नहीं है? तो उसी पुरुष को क्यों चुना? है हाँ बताया, दुर्योधन दुशासन कामी काटे हैं, दुखदाई है, कांटा दुखदाई होता है। उन दुखदाइयों का नाथने वाला, नाक में नकेल डालने वाला, बड़े से बड़ा कांटे को कंट्रोल करने वाला। बड़े से बड़ा कांटा होता है बबूल का, जो बंबई में यादगार है। क्या बबूल नाथ, बड़े से बड़े कांटा बबूल को भी नाथ लेने वाला, नाक में नकेल की डोरी डालने वाला वो है। तो वो आता है तो तन कंट्रोल करता है या आत्मा को कंट्रोल करता है? दोनों है? अच्छा, रथ लेने की यादगार है या नहीं? गीता में जो पहला ही पहला पहले प्रश्न पर चित्र होता है वो रथ की यादगार है कि भगवान ने आकर के रथ को कंट्रोल किया, या अर्जुन के ऊपर जोर जबरदस्ती की आत्मा के ऊपर कि तुम्हें करना ही पड़ेगा, रथ को कंट्रोल किया? आत्मा को स्वतंत्र छोड़ा। और वेद वाक्य है कि कोई एक अर्जुन नहीं है, ज्ञान का अर्जन करने वाला, ज्ञान के आधार पर सद्भाग्य का अर्जन करने वाला एक की बात नहीं है, नंबर वार है। तो वो अर्जुन नामधारी जो भी नंबर वार हैं उनको पुरुषार्थ करने के लिए स्वतंत्र छोड़ा है या कंपल्सरी कर दिया? स्वतंत्र छोड़ा। उस ऊंचते ऊंच कवा ये नियम है पक्का, क्या स्वतंत्र रहो और स्वतंत्र रहने दो। आत्मा को कंट्रोल नहीं करता, किसको कंट्रोल करता? तन को कंट्रोल करता। तो जिस तन को कंट्रोल किया उस तन की इंद्रियां भी हैं। नहीं तो सबको कंट्रोल कर ले। किया किया यज्ञ के आदि में कंट्रोल किया?
यज्ञ के आदि में तो कोई शरीर प्रवेश नहीं हुआ ना।
क्यों? यज्ञ के आदि में प्रवेश नहीं किया?
प्रवेश होते ही क्या?
तो आत्मा को कंट्रोल किया क्या? मन बुद्धि को कंट्रोल किया? कि तन के ऊपर सवार हुआ, तन के लिए बोला इदम शरीरम कौंतेय क्षेत्रम इत्यभिधीयते। ये तन युद्ध क्षेत्र है भारत का, जिसके आधार पर महाभारी महाभारत गृह युद्ध गाया हुआ है। किसके नाम पर महाभारी महाभारत युद्ध हुआ? किसने कराया? निमित्त कौन बना? प्रैक्टिकल में निमित्त कोई साकार बना या निराकार बना? तो उसके नाम पर उस युद्ध का नाम क्या पड़ा? महाभारी महाभारत गृह युद्ध पड़ा, जिससे बड़ा दुनिया में युद्ध कोई होता ही नहीं। और वो क्षेत्र है वो
धीरज धरो
जो राम वाली आत्मा है उसको और उसकी कर्मेंद्रिय को वो बापों का बाप शिव कंट्रोल करता है, या उसमें प्रवेश करने वाली कोई दूसरी आत्मा है जो कंट्रोल करती है? है? अच्छा, माना जो गले में फांस डाले पड़ा है, गला पकड़ रखा है, बाजुएं पकड़ रखी हैं, कमर पकड़ रखी है और ऊपर अहंकार के रूप में बैठा हुआ है देह अहंकार साक्षात, जो रावण के सर पर भी दिखाया जाता है, कौन कौन है वो है? गधा कौन है आत्मा? तो वो आत्मा जो सर्प के रूप में दिखाई गई, नंबरवार सर्पों के रूप में दिखाई गई, वो आत्मा महाकामी नहीं बनती है? बनती है या नहीं बनती? वो कंट्रोल करती है जिसे बैल कहा जाता है, बैलबाजी कराता है, भूत प्रेत क्या कराता है? भूत प्रेत क्या कराता है? जबरदस्ती कराता है देहधारी से, या खुला छोड़ देता है? जबरदस्ती करा लेता है, तो क्या शिव कराता है? शिव ज्ञान देता है कि जबरदस्ती करता है, ज्ञान देता है, बाकी आत्मा के ऊपर है क्या करे या न करे। लेकिन वो आत्मा में तीसरा और सवार है, वो क्या करता है? वो जबरियन करा लेता है, क्योंकि बैल है, पुरुषार्थी शंकर है, तो वो पुरुषार्थी बैल पर सवार है या बैल उसके ऊपर सवार है? बैल कहो, घोड़ा कहो, अश्व कहो, मनरूपी घोड़ा कहो, वो घोड़ा उस पर सवार है या घोड़े पर वो सवार है? बताओ ना। तो जो सवार है चंचल मन रूपी घोड़ा, जो देहभान से भरा पूरा है, देह अहंकारी, जो पांचों विकारों को कंट्रोल करता है, रावण का रूप दिखाते हैं तो रावण के दसों सिरों के ऊपर कंट्रोलर कौन है? देह अभिमानी गधा। क्यों गधा? अरे कितना भी उसको ज्ञान जल से स्नान धर कराओ, फिर भी क्या करता है? फिर भी देह अभिमान की मिट्टी में लोटा लोट लोटा लोट लोटा लोट। उसका नाम दिया जाता है काम लेने के लिए, ब्रह्मा। तो अपना पार्ट अदा करता है या नहीं? अम्मा का पार्ट अदा करता है या नहीं? गोद में ही लेता है या पति जो करता है वो कर लेता है? मां के रूप में गोद में ही लेता है, जीवन भर वहीं तक सीमित रहा कि आगे बढ़ गया, किसी ने बताया, किसी ब्रह्मा कुमार ने देखा, ब्रह्मा कुमारी ने अनुभव लिया। आज तक किसी ने बताया कि ब्रह्मा बाबा ने हमारे साथ ऐसा किया जैसा आज के दुर्योधन दुशासन भी करते हैं, जबरदस्ती कर लेते हैं? किया क्या? गोद ही लिया ना। गोद लेना अम्मा का काम नहीं है, कौन गोद लेगा? गोद किसकी प्रसिद्ध है बच्चों के लिए? अम्मा के लिए। तो अम्मा तो है, पक्की अम्मा है, कच्ची अम्मा है? अरे 100% अम्मा है या नहीं? 100% अम्मा है, सृष्टि की पुरानी से पुरानी अम्मा है, ब्रह्मा है। और उस ब्रह्मा में ही देहभान है, तो आज सृष्टि की सारी कन्याओं माताओं में देह भान है, देह अहंकार है। वो देह अहंकार छूट नहीं सकता, देह छूट जाएगी लेकिन देह अहंकार नहीं छूटता। आप कहेंगे देह अहंकार नहीं छूट सकता, तो ब्रह्मा दाढ़ी मूछ वाला विकारी मनुष्य इस दुनिया का जब शरीर छोड़ देता है तो अपनी अंतिम तामसी स्टेज में किसके अंदर पार्ट बजाता है, कि तामसी स्टेज में पार्ट बजाने के बावजूद भी पूजा जाता है। कोई माता के चोले में प्रवेश करता है और वो माता इतनी ताकत धारण करती है, जो ताकत उस माता ने पिता से ली थी पूर्व जन्म में। कौन सी ताकत ली थी? जिस ताकत के आधार पर वो सारे संसार को जीत लेती है, वो ताकत कौन सी है? पवित्रता की ताकत तो होगी ही होगी, क्योंकि प्योरिटी की ताकत के बगैर तो दुनिया का कोई काम अच्छे से अच्छा स्थापना का कार्य ही क्यों न हो, नई दुनिया की, और बुरे से बुरा विनाश का कार्य ही क्यों न हो, संपन्न नहीं हो सकता, वो तो पक्की बात है। और वो अंदरूनी चीज है कि वो ताकत उसने ली है किसने, किसने? महाकाली ने देह के रूप में सात्विक और रजो प्रधान स्टेज में जो पार्ट बजाया, उस स्टेज में उसने जगत पिता की एड़ी से लेकर चोटी तक की लंबे समय की पावर ली, जो दुनिया में कोई आत्मा ने नहीं ले पाई। बोलो ना करो, ली। और वो ही ताकत के आधार पर, जो संघ के रंग की ताकत ली, उसी के आधार पर वो आत्मा इस मनुष्य सृष्टि के ऊपर सारी सृष्टि पर राज्य करती है। इसलिए ब्रह्म वाक्य में बोला है कि सुप्रीम सोल शिव गॉड फादर प्रजापिता के द्वारा वर्षा देता है जगत माता को। जगत पिता किसको वर्षा देता है? जगत माता को वर्षा देता है, और जगत माता से सब बच्चों को वर्षा मिलता है। कब? वो माता के सामने झुकेंगे तब, या जैसे आज की दुनिया में बच्चे कर रहे हैं जो सृष्टि के आदि पत्ते ने किया था। द्वापर के अंत में कृष्ण क्या बन बैठा, कृष्ण बच्चा क्या बन बैठा गीता माता का? पति बन करके बैठ गया, जुल्म कर दिया। माता का बच्चा, और वो भी बड़ा बच्चा मनुष्य सृष्टि का, पत्ते के रूप में। पत्तों के रूप में बड़ा बच्चा कौन? कृष्ण बच्चा। और वो बड़ा बच्चा भी माता के ऊपर सरपरस्त बन के बैठ जाए, अपने कंट्रोल में चलाए, तो पति बन के बैठ गया ना, माता के आर्डर को मानता है या अपना आर्डर चलाता है? मां धातु परायण पहले पत्ते की ही ये गति हो जाती है। क्या गलत फहमी में आकर के, क्या गलत फहमी, शिवो अहम, मैं कौन हूं, मैं ही भगवान हूं। गीता माता तो है, लेकिन गीता माता का साकार पति भी कोई होगा या नहीं होगा, तो वो कौन है? जगत पिता है कृष्ण बच्चा उर्फ है, ब्रह्मा की सोल जानती है, वो खुद ही नहीं जानती, तो शूटिंग हो गई। तो जो ब्रह्मा की बेटी कही जाती है जगदम्बा सरस्वती, उसको वाणी की अथॉरिटी मिल जाती है। यज्ञ के आदि में भी बड़ बोली थी, क्या बड़ बोली थी या बुद्धिमान थी, बड़ बोली थी, तो आदि सो अंत में भी बड़ बोली होती और उसका यादगार भी है। कौन से धर्म में? सिख धर्म में यादगार है कि उनका जो पूजा स्थल है, क्या नाम, गुरुद्वारा, क्या चलता रहता है, है? गुरु जी की वाणी चलती है, उस वाणी की कोई व्याख्या नहीं करता। समझाता नहीं है कैसे कौन, ऐसे आज की दुनिया में जो भी गवर्नमेंट चल रही है देश देशांतर में, कौन सी शक्ति के आधार पर वो गवर्नमेंट की सत्ता हथियार लेते हैं? हर देश में जो नेता लोग भाषणबाजी करते हैं, वो भाषणबाजी के आधार पर देश की सत्ता को अपनी मुट्ठी में कर लेते हैं। करते हैं या नहीं? तो क्या वो पंडित विद्वान आचार्य हैं? संसार के सत्य को जानते हैं? जानते हैं? नहीं जानते। इसलिए तुलसीदास ने भी कहा कि कलयुग में, खासकर जब तमोपठान कलयुग बनता है, तो पंडित सोई जो गाल बजावा। क्या पब्लिक क्या समझती है? होशियार कौन है जो गाल बजाता रहे, भाषणबाजी करता रहे? और बाबा क्या कहते, वेदवाणी क्या कहती, वेदवाक्य क्या कहते? अरे ये कौरव गवर्नमेंट है। कौन सी गवर्नमेंट? कौ माने कौआ, रब माने शोरगुल, कौओं की तरह शोरगुल मचाने वाले ये हैं कौरव गवर्नमेंट के सत्ताधीश। कौआ क्या खाता है, है? कांव कांव खाता नहीं, वो तो मुंह से बोलने की बात, खाता क्या है, गंध खाता है। क्या मनुष्य जो खाता है, तो मनुष्य जो कचरा निकालता है, उस कचरे को कौआ खाता है, माने गंध, गंध खाता है। जो भी नेताएं होंगे शुरू से लेके देखो अब तक, ये 5 स्टार होटल बनाने के लिए तरजीह किसने दी? ये भ्रष्टाचारी गवर्नमेंट तरजीह देती है। अभी प्रयास करते हैं। नरेंद्र मोदी भक्ति मार्ग की दुनिया के, भक्ति मार्ग की दुनिया के नरेंद्र मोदी भगवान बाप को जानते हैं क्या? नहीं जानते, इसलिए भक्ति मार्ग के हैं, ज्ञान मार्ग के हैं नहीं। ज्ञानी वो जो बाप को जाने, ऊंचे ते ऊंचे बाप को। लेकिन नाम तो है भक्ति मार्ग में क्या? नरेंद्र मोदी, नर इंद्र, जो भी मनुष्य मात्र हैं भारत के, उनका इंद्र राजा। और है वास्तव में कि नहीं? और सबकी बुद्धि मोड़ी कि नहीं मोड़ी? तो पक्का पक्का नरेंद्र मोदी हुआ या नहीं हुआ? लेकिन भारतवासियों की बुद्धि मोड़ी, सारी दुनिया की बुद्धि नहीं मोड़ सकता। सारी दुनिया में परिवर्तन लाने वाला जो बेहद का नरेंद्र मोदी है, वो संसार में अप्रत्यक्ष होने वाला है। बड़े बड़े ज्योतिषियों की जो वाणी है, भविष्यवाणी, वो उठा के देख लो तो है, तो नामधारी तो है। जैसे गांधी जी नामधारी हुए, क्या चाहते थे? राम राज्य चाहते थे। फिर क्या हुआ? और ही रावण राज्य आ गया। राम राज्य तो ला नहीं सके, क्योंकि जानते ही नहीं थे कि राम राज्य राम राजा ही लाएगा या कोई दीगर व्यक्ति लाएगा। कोई भी राजा अपना राज्य खुद स्थापन करता है, या उसका राज्य कोई दूसरा बनाता है और राजा बन के वो बैठ जाता है। क्या होता है? जो युद्ध जीते, युद्ध में जीत पाए तो राजा करता है, राजा बनता है। तो ये गीता में बताया है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्र, क्षेत्र माने युद्ध क्षेत्र। ये दुनिया युद्ध क्षेत्र बन जाती है। दो चार धर्मों का युद्ध क्षेत्र नहीं, सर्वधर्मों का युद्ध क्षेत्र। गीता में ही लिखा हुआ है, सर्वधर्मान परित्यज्य। क्या द्वापर में सर्वधर्मान होते हैं? द्वापर में तो सर्वधर्म नहीं होते। ये तो कलयुग में अंत में आकर के अनेक धर्म इस संसार में फैल जाते हैं। तो उन सब धर्मों को त्यागो, सब धर्मों को परित्यज्य। क्या करो? सब धर्मों को त्यागेंगे तो उनके धर्म पिताओं को गले लगाएंगे। क्या करेंगे? सभी दुनिया के जो भी धर्म हैं, देहधारी धर्म पिताओं के द्वारा स्थापन किए हुए, और चाहे कोई भारत के विद्वान पंडित आचार्य हो, जिन्होंने गीता की व्याख्याएं की हो, उन सब गुरुओं को मारो गोली। क्या बोला? वेदवाणी में, वेद वाक्य में सबको मारो गोली। हो बंदूक की गोली नहीं मार देना, वेद की भाषा है, वेद के बाप की, ज्ञान की गोली मारो। ऐसी गोली मारो जो गोली लगे ठिकाने पर और देवान खलास हो। तो
रावण जैसे खलास हो जाएगी। गोली कहो या राम के बाण कहो, क्या राम बाण कहो, ऐसे तीखे तीखे बाण ज्ञान के खलास हो जाए, उनका जो अहंकार है खलास हो जाए, जिस मस्ती में है कि हम दुनिया में बहुत शक्तिशाली हैं, वो उनकी शक्ति पस्त हो जाए, हिम्मत पस्त हो जाए, उनमें ताकत ही न रहे कि सामने आकर के ज्ञान का युद्ध कर सके। दूर दूर से चाहे जितने बाण मारते रहे उनका निशाना नहीं लगता। तो ये युद्ध क्षेत्र किसको बताया है? इदम शरीरम, ये जो शरीर है ये युद्ध का क्षेत्र है। भारत जड़ भारत जमीन नहीं, चैतन्य भारत, यहां से ये ज्ञान युद्ध निकलता है। इस ज्ञान का नाम क्या पड़ता है आदि में? अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ। जिस अविनाशी ज्ञान रुद्र ज्ञान यज्ञ में सारी दुनिया को स्वाहा होना है। किसने आरंभ किया? कौन है इस यज्ञ कुंड का पिता? अरे पिता से छोड़ो, वो स्वयं ही यज्ञ कुंड है। क्या? इस यज्ञ कुंड में सारी दुनिया स्वाहा होने वाली है, लेकिन यज्ञ कुंड अविनाशी है, ये यज्ञ अविनाशी है, इसका विनाश नहीं हो सकता, इसका कोई विनाश नहीं कर सकता। ये अविनाशी कुंड सारी दुनिया का विनाश करेगा, लेकिन इसको ठंडा कोई नहीं कर सकेगा। कालों का काल गाया हुआ है, महाकाल गाया हुआ है, जिसको कोई काल खा नहीं सकता। सारी दुनिया को वो खाएगा, लेकिन उसको कोई कोई नहीं खा सकता। तो बताया कि वो अविनाशी है, उसका विनाश करने की शक्ति किसी में नहीं है। और वो भारतीय परंपरा में भारतीय शास्त्रों में आज भी गाया हुआ है, लेकिन थोड़ी गलती हो गई, क्योंकि मनुष्यों के द्वारा शास्त्र बने हुए हैं कि भगवान ने बनाए, मनुष्यों ने बनाए, और मनुष्य विकारी होता है या निर्विकारी होता है? विकारी होता है। विकारी मनुष्यों ने विकारी बुद्धि से जो शास्त्र बनाए और उन शास्त्रों की जो व्याख्या की, उसमें विकृति आ गई। इसलिए संसार में आज भी गायन है, कै समझे कवि कै समझे रवि, रवि माने सूर्य, वो जड़ सूर्य चांद सितारों की बात नहीं है। यहां कौन से सूर्य की बात है? चैतन्य ज्ञान सूर्य की बात है। इसलिए गीता में कहा, सुप्रीम गॉड फादर स्वयं कहते हैं कि मैं जब इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर आता हूं तो जिसको पहले पहले ज्ञान देता हूं उसको टाइटल देता हूं, क्या क्या नाम देता हूं है? ज्ञान सूर्य, जो शास्त्र में गाया हुआ है, रघुवंश शिरोमणि,
रघु माने सूर्य, सूर्य का जो वंश हुआ उस वंश में शिरोमणि का पार्ट बजाने वाला राम, वो राम वाली आत्मा ज्ञान धारण करने में, ज्ञान सुनने में, सुनाने में, समझने में, समझाने में थोड़ी देर बाद स्वतंत्र है या परतंत्र है? स्वतंत्र है, लेकिन रथ का सारथी कौन बनता है? रथ को चलाने वाला वो बनता है। जबरिय नहीं, समझ पूर्वक समझाता है, और कितने साल समझाता है, है? आज कितने साल हो गए समझाते समझाते, 80 साल हो गए, और बच्चों से भी कहता है क्या धीरज धर्म हुआ धीरज धर्म माना, हथेली पर आम नहीं जमाया जाता है। तुरंत सारे काम हो जाते हैं क्या? अरे इतने ग्रेट फादर्स आए, अब्राहम बुद्ध क्राइस्ट ग्रेट फादर्स कहे जाते हैं, इस दुनिया में आए और चले गए, हिम्मत लेकर के आए कि हम इस दुनिया को सुधारेंगे, सुधारा कि खुद ही नीचे गिर गए, औरों को भी नीचे गिरा गए, अपने फॉलोअर्स को भी नीचे गिराया, आप गए और घाल हैं। तो बताया कि मैं जिस तन का आधार लेता हूं, जिस शरीर रूपी रथ का आधार लेता हूं, ये बड़े से बड़ा युद्ध क्षेत्र है, धर्म क्षेत्र है, कैसा बड़ा, सभी धर्म और धर्मखंड इसमें स्वाहा होने वाले हैं, एक ही सद्धर्म बचेगा। क्या धारणा है? एक ही सत माने सच्चा, धर्म धारणा क्या है? सद्धर्म सनातन माने पुराने से पुराना, अविनाशी, अविनाशी सत्य सनातन धर्म क्या है? सत्य धर्म, अरे कुछ है, हाँ स्वधर्म क्या है? स्व धर्म, स्व माने आत्मा, धर्म माने धारण, इसलिए बोला स्वधर्मे निधनम से या पर धर्मो भयावह, अपनी आत्मा की स्मृति में टिको, अपनी आत्मा की स्मृति ही श्रेष्ठ है। धारणा श्रेष्ठ कौन सी है? आत्मा की स्मृति की धारणा ही श्रेष्ठ है। परधर्म, परधर्म क्या है? है पर है ये शरीर, क्या अपना है ये शरीर? अपना है नहीं, पराया है। पराया माने किसका है? पांच तत्वों का बना हुआ ये संघात है, इसलिए पर धर्म है। पांच तत्व तो जड़ है, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश। लेकिन गीता में बताया है कि दो प्रकार की रचना है। क्या? एक है स्थूल रचना जो दुनिया में फैली हुई है पृथ्वी जलवायु अग्नि आकाश के रूप में, तामसी रूप धारण करती है तो भयंकर विनाश लाती है। लेकिन उसको भी कंट्रोल करने वाली वाइब्रेशन से एक और सूक्ष्म प्रकृति है। इसलिए गीता में दो प्रकार की प्रकृति बताई गई, जड़ पावरफुल या चैतन्य पावरफुल। है चैतन्य पावरफुल होता है, तो जो चैतन्य प्रकृति है कही जाती है चैतन्य आत्मा। पृथ्वी देवताए नमः, जल देवता, वायु देवता, अग्नि देवता। शास्त्रों में देवता का रूप दिया है या नहीं दिया? तो चैतन्य है देवता है या जड़ है? जड़ है। जड़ तो बुद्धि वाले हैं, लेकिन आत्मा तो चैतन्य है। तो जो जड़त्व बुद्धियों में पांच तत्वों में सबसे जास्ती जड़ तत्व कौन सा है जिसमें पांचों ही तत्व समाये हुए हैं? पृथ्वी। नाम क्यों पड़ा पृथ्वी? प्रथुलाति, विस्तार को पाती है, इसलिए उसका नाम पृथ्वी माता है। क्या माता चौड़ी होती जाती है? नहीं, माता चौड़ी होती जाती है। और कन्या चौड़ी होती है क्या? नहीं, कन्या तो चौड़ी नहीं होती। तो प्रथुलाति माने विस्तार को पाती है। जब तक कन्या का रूप है तो भारत माता है। क्या? भा माने ज्ञान की रोशनी, और रत माने लगी रहने वाली। ज्ञान की रोशनी में प्रैक्टिकल जीवन में लगी रहने वाली भारत माता कोई हुई है कभी? बोल बोल करने वाली मात्र नहीं, बोल बोल करने वाली को वाक देवी कहा जाता है। क्या कहा जाता? वाणी की देवी। वाणी में उसको कोई हरा ही नहीं सकता। तो वो वाक देवी प्रथुलात विस्तार को पाती है। पहले तो जरूर कन्या थी, फिर बाद में माता बनती है तो विस्तार को पाती है। जैसे जैसे धर्म पिताएं आते हैं वैसे वैसे धर्मखंड समंदर से ऊपर आ जाते हैं। नंबरवार धर्म पिताएं आते हैं और नंबरवार धर्मखंड समंदर से ऊपर आते हैं, जनसंख्या बढ़ती जाती है। फिर क्या होता है? उसको कहते हैं सीता माता। इसलिए वेदवाणी में बोला है कन्याओं माताओं की तरफ इशारा करते हुए, हाँ तुम सब सीताएं हो, क्या हो? सीताएं हो। कहां से निकलती है? धरणी से ही निकलती है और फिर अंत में धरणी में ही समा जाती है। चलो वो एक सीता अव्वल नंबर वाली उनको कह दिया कि देवान की धरणी से ही निकलती है, देवान में समा जाती है, तो बाकी जो सीताएं हैं तुम सब सीताएं नंबर वार वो कहां समा जाती है? हा? वो जगदम्मा के अंदर में आ जाती है। किसके अंदर में? जगदम्बा के अंदर में आ जाती है। जिस जगदम्बा तामसी बनने वाली के लिए गाया हुआ है, क्या राज करेगा? खालसा। सारी दुनिया के ऊपर राज्य करेगा। कोई कहे महाकाली काले मुंह वाली महागौरी के ऊपर भी राज्य करेगी क्या? है? करेगी है? नहीं करेगी? वो है ही जगत माता। क्या? सारे जगत की माता। जो जगत माता है वो ब्राह्मणों की सृष्टि में जो पहला ब्राह्मण है उसकी माता है या नहीं है? नहीं तो ब्राह्मण कैसे बन गया? किसकी औलाद? ब्रह्मा की औलाद, पहला ब्राह्मण। तो सवाल पैदा होता है पहली माता कौन जिससे पहला ब्राह्मण बना है? हाँ, यज्ञ के आज में वो ही माता जो यज्ञ को कंट्रोल कर रही थी, ब्रह्मा बाबा के गुप्त होने के बाद। ऐसी ऐसी बच्चियां थी जो मम्मा का बाबा को भी दिल कराती थी, टीचर हो बैठती थी, उनमें बाप प्रवेश करते थे। ऐसे बोला है ब्रह्मा महावाक्य में। हम समझते थे ये तो बहुत अच्छा नंबर माला में आ देंगे, वो भी गुम हो गए। तो मम्मा बाबा की भी दृष्टि में जो यज्ञ के आज में ऊंच थे, रिहर्सल हो गई ना, उनके संकल्पों में ऊंच होने की शूटिंग हो गई, तो जो आज में ऊंचे वो अंत में भी जरूर आदि सो अंत में भी ऊंचे होकर के प्रत्यक्ष होते हैं। इसलिए बताया कि शिव बाप जब आते हैं तो अकेली आत्मा के रूप में आते हैं या कोई को साथ लेके आते हैं? तीन मूर्तियों के साथ आते हैं, ब्रह्मा सिर्फ बोलने वाला, क्या सुनाने वाला और सुनने वाला, बस। दूसरी मूर्ति या ब्रह्मा के बाद स्थापना होने के बाद पुरानेपन का विनाश, तो शंकर द्वारा विनाश। दूसरी मूर्ति जिसे लास्ट नाम दिया गया ब्रह्मा विष्णु शंकर, और सबसे अंत में प्रत्यक्ष होने वाली मूर्ति विष्णु। कैसी विष्णु मूर्ति? नो विषैटाल, चाहे वाचा हो, चाहे कर्मेंद्रियां हो, चाहे दृष्टि हो, विषय विकार की बात ही नहीं, विविचार की बात ही नहीं, ऐसी वैष्णवी शक्ति जिसको नाम देते हैं महालक्ष्मी, जिसकी यादगार में आत्मा रूपी दीपकों की अवली, दीपावली जो मनाई जाती है, उस दीपावली में महालक्ष्मी की पूजा होती है। किसकी? महालक्ष्मी की पूजा होती है। तो महालक्ष्मी नाम क्यों पड़ा? लक्ष्मी क्यों नहीं? क्योंकि दो आत्माएं कार्य करती हैं, एक महाकाली के रूप में और एक महागौरी के रूप में। दोनों के स्वभाव संस्कार का मेल होता है तब कहा जाता है महालक्ष्मी। उन दोनों में एक बुद्धि से समझने समझाने वाली और समझ कर प्रैक्टिकल कर्म के रूप में प्रत्यक्ष होने वाली कौन? लक्ष्मी कही जाती है, महागौरी कही जाती है, और दूसरी महाकाली। शरीर के आधार पर काले कर्म होते हैं या आत्मा सिर्फ अकेली काला कर्म करती है? है? शरीर के आधार पर काले कर्म होते हैं। काले कर्म माने छुपा कर जो किए जाएं, समाज की दृष्टि में, परिवार की दृष्टि में उसे कहते हैं काला मुंह करके आई है। तो विविचार की ओर इशारा है। काला माने अनेक रंगों को मिला दो तो क्या हो जाता है? है? काला रंग हो जाएगा। ये भी सत्तर ऋषि हैं, सात प्रकार के नारायण गाए हुए हैं, उन सभी सप्तरंगों को मिला दो, मिक्सरटी कर दो तो क्या हो जाता? काला रंग बन जाता। ये भी सात नारायण हैं जो द्वापर में और कलयुग में आकर के ऊपर से आने वाले धर्म पिताओं के आधार बनते हैं। जो ऊपर से आते हैं वो धर्म पिता, जिनका आधार लेते हैं वो धर्म की माता। क्या हुई? माता। जिनका आधार लिया वो कमजोर आत्माएं या पावरफुल आत्माएं? कमजोर आत्माएं होती हैं, क्योंकि अनेक जन्म लेते हुए आई हैं। ज्यादा जन्मों में ज्यादा सुख लिया है इंद्रियों से, तो ज्यादा देह के सुख भोगने से देह कमजोर हो जाएगी, आत्मा कमजोर हो जाएगी या पावरफुल बनेगी? है? पावरफुल बनेगी, कमजोर हो जाती है। वो कमजोर बनी हुई आत्मा फिर काली कही जाती है, काले कर्म करने वाली, छुप के जो कर्म किया जाता है वो काला कर्म है। जब से धर्म पिताएं आए, खासकर काम विकार की सृष्टि में वृद्धि करने वाला इब्राहिम जब से आया, तब से काम विकार की वृद्धि हो गई। यहां तक वृद्धि हुई कि उनमें इब्राहिम के फॉलोअर्स में बहनों और भाइयों में शादी होने लगी। चाहे मामा की लड़की हो लड़का हो, चाहे चाचा की लड़की लड़का हो, भारत में उन्हें भाई बहन माना जाता है या पति पत्नी माना जाता है, और नॉर्थ इंडिया में तो खास क्या ऐसा नहीं दे होता कि बहन के साथ भाई शादी करे। और ये परंपरा पहले इस्लामियों ने डाली, क्यों? उनको लाजमी है, क्योंकि उनकी जनसंख्या इस दुनिया में होती ही नहीं, तो संख्या की वृद्धि करने के लिए उन्होंने ये तरीका निकाला। अब जानवरों में और मनुष्य में क्या अंतर रहा? जानवर हो, बंदर हो, कुत्ता हो या कोई भी जानवर हो, वो बहन को जानता है, मानता है, प्रैक्टिकल में संबंध निभाता है, मां को जानता है, मां को भी नहीं जानता, बहन को भी नहीं जानता, बेटी को भी नहीं जानता। उनको तो अपनी जानवरियत का कर्म करने से मतलब मन है ही नहीं, जो विचार करें कि प्रदूषण फैल जाएगा हमारी जाति में। क्या प्रदूषण फैलता है तो क्या होता है, है? दुनिया में जानवरों में जो राजा माना जाता है शेर, उसकी तादाद कम होती जाती है, क्षीण होती जाती है या वृद्धि होती है? क्षीण होती जाती है। दूसरी दूसरी प्रकार की जातियां उत्पन्न होती जाती हैं। कुलच्छ है जो गीता में बोला हुआ है कि स्त्रियों के प्रदूषित होने से कुल नष्ट हो जाता है। इसलिए आज से 400-500 वर्ष पहले तुलसीदास ने लिख दिया, भय वर्ण संकर सवै, सब वर्ण संकर हो गए, मिश्र हो गए। कोई शुद्ध नहीं बचा ब्राह्मण, कोई शुद्ध क्षत्रिय नहीं बचा, कोई शुद्ध वैश्य नहीं बचा। अशुद्धों का तो काम है क्षुद्र कर्म करना। इन सब बातों की शूटिंग कहां होती है, रिहर्सल कहां होती है? श्रेष्ठ आत्माएं नीचता की रिहर्सल करती हैं कि नीच आत्माएं नीचता की रिहर्सल करती हैं? जो श्रेष्ठ थे श्रेष्ठ शिव है, वो श्रेष्ठ परंपरा डालता है, परंतु वो निराकार है। जिस साकार में प्रवेश करता है वो साकार निराकार का मेल भी श्रेष्ठ परंपरा ही डालता है। उसके बाद जैसे जैसे नीचे आते जाओ,
अच्छा होता जाता है, है? गिराने वाले बनते हैं, उठाने वाले बनते हैं, गिराने वाले बनते हैं। इसलिए बताया कि जो गाया जाता है शास्त्रों में भाग्यशाली रथ, स्वयं भाग्यशाली रथ है तो दूसरों को भाग्यशाली बनाएगा या दुर्भाग्यशाली बनाएगा? स्वयं ज्ञान का धनवान है तो जो भी संसर्ग संपर्क संबंध में आएंगे उनको ज्ञानवान बनाएगा या अज्ञानी बनाएगा? ज्ञानवान बनाएगा। धनवान है तो धनवान बनाएगा, ज्ञानवान है तो ज्ञानवान बनाएगा। बाप जमींदार है तो जमीन का मालिक बनाएगा बच्चों को। तो वो शिव साफ कहता है मैं शक्तिवान हूं, लेकिन मास्टर शक्तिवान नहीं, सर्वशक्तिवान भी हूं लेकिन मास्टर सर्वशक्तिवान नहीं। तुम बच्चे मास्टर सर्वशक्तिवान बनते हो नंबर वन, किस बात में मास्टरी? वो कौन सी बात है? है स्मृति, याद, स्मृति में मास्टरी, याद में मास्टरी। कैसी स्मृति? एक शिव बाबा दूसरा में कोई। अगर व्यभिचारी स्मृति है तो व्यभिचारी धर्मों के प्रभाव में आएंगे और प्रजा बन जाएंगे। अब व्यभिचारी स्मृति है तो जो अव्यभिचारी है उसी के प्रभाव में रहेंगे, औरों के प्रभाव में नहीं आएंगे। हैं तो नंबर वन क्या पढ़ाई पढ़ने वाले कौन है बच्चे? आत्मा, आत्मा रूपी जो बच्चे हैं, जो निराकार ज्योति बिंदु स्वरूप में टिकते हैं, वो आत्मा रूपी बच्चे प्रैक्टिकल में ऐसी स्टेज धारण करते हैं। जो कोई भाग्यशाली बनते हैं एक के संग के रंग में आकर, और कोई अनेकों के संग के रंग में आकर क्या बनते? दुर्भाग्यशाली बनते। कान में सुनेंगे सुनाएंगे, रजाई के अंदर बात करेंगे, अनेकों से बात करेंगे, दो से बात करेंगे, चार से बात करेंगे, पोशीदा बातें करेंगे, पर्सनल बातें करेंगे। वो बातें सुप्रीम सोल तक नहीं पहुंचाएंगे, आपस में ही लेन देन करेंगे। तो मुख और कान व्यभिचारी हुए या अव्यभिचारी हुए? व्यभिचारी हो गए। इसलिए बोला है, ब्रह्म वाक्य है, एक से सुनेंगे तो क्या होगा? शिष्टाचारी बनेंगे, और दो या चार या अनेकों से सुनेंगे, रज रज के उनसे बातें करेंगे, उन बातों को जीवन में धारण करेंगे, स्मरण में लाएंगे तो क्या बनेंगे? भ्रष्टाचारी धर्मों में जाएंगे। इसलिए गीता कहती है स्वधर्मे निधनम सेय,
परधर्म भयावह। क्या स्व माने आत्मा, आत्मा की धारणा में टिकना चाहिए। परधर्म देह के जो धर्म हैं, धर्म पिताएं हैं, उनके बताए हुए रास्ते पर नहीं चलना है। घड़ी घड़ी टैली करो, यहां तक बता दिया कि ब्रह्मा कुमारी की भी जो मत मिले उसे भी जज करना है बाप की वाणी से, कि वो मत राइट है या रंग है। एक की मत से मिलती जुलती मत है तो धारण करना है, नहीं तो एक कान से सुनो दूसरे कान से निकाल। हियर नो इविल, गंदी बात है। टाक नो इविल, उसका जवाब भी मत दो। इसलिए भक्ति मार्ग में भी गायन है, सदगुरु निंदा सुनिए न काना, होय पाप गौ घात समाना। जैसे गौ की हत्या करते हैं तो भक्ति मार्ग में बहुत बड़ी हत्या मानी जाती है। वो तो समझते नहीं है कौन सी गौओं की बात है, वो जानवर गौओं को समझ लिया है। अरे जानवर गौओं की बात नहीं है, ये तो कन्याओं माताओं की बात है, जो खास भारतीय की कन्याएं माताएं हैं वो पवित्रता को अक्षुण्ण रखने के लिए अपने घर गृहस्थ की दायरे में रहती हैं, चार दीवारी में रहती हैं, बाहर की दुनिया में सुपनखा पूतना की तरह भ्रमण करती है नहीं करती है। माता पिता के कंट्रोल में रहती है। माता पिता जीवन में जिस खूंटे से बांध देंगे एक बार, सारा जीवन उसी खूंटे से बंद कर देंगे। वो ह्यूमन गौओं की बात है यह जानवर गौओं की बात है? है ह्यूमन गौओं की बात है। कृष्ण को भगवान कह दिया और दिखाई दिया कि वो गौएं चराते थे, घास खिलाते थे। अरे भगवान आएगा तो मनुष्यों को सुधारेगा या जानवरों को सुधारेगा? मनुष्यों की बात है, जानवरों की बात थोड़ी है। जो ढेर के ढेर जानवरों के अवतार दिखाई दिए भगवान के, कच्छा अवतार, मच्छा अवतार, कैसे कैसे एग्रीव अवतार, सूकरा अवतार, सुअर का अवतार, तो उनके भाग्यशाली और दुर्भाग्यशाली बनने की बात नहीं है। किसकी बात है, मनुष्यों की बात है या जानवरों की बात है? मनुष्यों की बात है। मनुष्यों की आत्मा भाग्यशाली बनती है अगर 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 प्रैक्टिकल में जो शिव समान स्टेज धारण करने वाली आत्मा है उसको फॉलो करे, उसके महावाक्यों को भी फॉलो करे और क्या फॉलो करे, पुरुषार्थ को भी फॉलो करे। इसलिए कहा फॉलो मदर एंड फादर। परंतु माता पिता कौन है, यही समझने में बुद्धि काम नहीं कर पाती। कहते हैं मंदिर में जाके शिव के सामने माथा टेकते हैं, शिवलिंग के सामने कहते हैं तुमेव माता च पिता तुमेव, तू ही मेरी माता है तू ही मेरा पिता है। अरे एक पत्थर का लिंग माता भी है और पिता भी है, दोनों कैसे? माता पिता अलग होते हैं कि एक होते हैं? अलग अलग होते हैं। स्त्री चोला को माता कहा जाता है, पुरुष चोला को पिता कहा जाता है। लेकिन शिवलिंग को क्यों कह दिया माता पिता? उस शिवलिंग का जो सात्विक स्वरूप है भक्ति मार्ग में, वो द्वापर के आदि में सोमनाथ मंदिर में दिखाया गया, जहां लाल गोल पत्थर का लिंग बड़ा रूप, साकार रूप, शारीरिक रूप, और उसमें ज्योति बिंदु हीरे के रूप में दिखाया गया। हीरा जड़ या चैतन्य? चैतन्य हीरा। और वो हीरो पार्टधारी को हीरा कहा जाता है या कोई भी पार्टधारी को हीरा कहा जाता है? हीरो पार्टधारी को हीरा कहा जाता है। शिवबाप कहते हैं मैं न पूज्य बनता हूं और न पुजारी बनता हूं। तो जो सोमनाथ में शिवलिंग दिखाया गया उसमें हीरा और गोल काला पत्थर दोनों एक अविनाशी शरीर की यादगार, क्या बड़ा रूप, और उसमें जो छोटा रूप है वो किसकी यादगार? आत्मा की यादगार। साकार और निराकार का मेल है, कवियों की भाषा है, मूर्तिकारों की भावना है। जो अजंता एलोरा की गुफाओं में दिखाई गई थी सबसे पहले, बाद में शास्त्र बने। ओम शांति।